الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیو ورلڈ آرڈر، گریٹر اسرائیل، گلوبلائزیشن، دجالی فتنہ، اور اینڈ میں اس کلائمیکس کی بات کی تھی کہ دجال کا خود ظاہر ہو جانا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس فتنے میں دنیا کو مبتلا کیا ہوا ہے، تو درجہ بدرجہ یہ اس فتنے کا گہرے سے گہرا ہوتے جانا، اور بالآخر یہ کہ جب وہ دجال وہ خود ظاہر ہو جائے گا، جب ان پرسن ظاہر ہو جائے گا، یہ اس فتنے کا کلائمیکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث سنا چکا ہوں میں آپ کو، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ اور آزمائش کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں، اس آزمائش کو کہتے ہیں، یا اس پروسیس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سونے کی امپیورٹیز اور پیورٹی کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سونے کو تپایا جاتا ہے، گرمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس ڈگری تک، اس لیول تک کہ اس کے اندر اگر امپیورٹیز ایڈ کی ہوئی ہیں تو وہ میلٹ ہو جاتی ہیں، وہ ایٹ اے لیسر ڈگری میلٹ ہو کے اتر جاتی ہیں، جو بچ جائے گا وہ ہوگا اصل سونا۔ تو فتنہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو، مومن کو اس حد تک آزمائے کہ اس آزمائش کے ذریعے اس کا سچا یا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے، کتنا مومن تھا، کتنا منافق تھا، یہ چیز ایکسپوز ہو جائے، کھل کے سامنے آ جائے اس کی۔ ساری بات ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے آزمائش کے ذریعے ہی ہوتا ہے، ٹیسٹ کے ذریعے ہی پتہ لگتا ہے کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ پھر دجال کی قدرت، اس کو جو حاصل ہوگی اس کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ میں سے کسی نے نہیں اٹینڈ کی تھی کلاس تو اس کو پلیز سن لینا ایک دفعہ، کیونکہ میں نے صرف حدیثیں نہیں سنائی تھیں، میں نے اس کو سائنس کے ساتھ کمپیئر کر کے بتایا تھا کہ کیا چیز کہاں چلتی ہے۔ ایک حدیث مجھ سے رہ گئی تھی، اس کا مفہوم الفاظ یہ ہیں کہ جہاں دجال کی اور بہت ساری باتیں بتائی تھیں کہ اس کی رفتار کتنی ہوگی، اس کی دنیا کے اندر اسٹے کتنا ہوگا، ان میں سے ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ وہ ایک ایسی پکار لگائے گا دنیا میں جو مشرق اور مغرب میں سب سن سکیں گے۔ تو یہ چیز بھی اچیو ہو چکی ہے، ساؤنڈ سسٹم یا براڈ کاسٹ جو ہے، انٹرنیٹ براڈ کاسٹ ہو یا سیٹلائٹ براڈ کاسٹ ہو، اس میں جو کچھ بھی کہیں ہو رہا ہو پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ان سچی حدیثوں میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ سب کچھ، یہ زمانہ، یہ وقت، یہ آ رہا ہے، یہ ہونا ہے، اور اس کی سرکش طاقتیں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی تاغوتی طاقتیں ہیں، یہ اس راستے میں بھاگ رہی ہیں، تیز تیز زمانہ اس طرف جا رہا ہے، یہ زمانے سے ہم بھاگ نہیں سکتے اس چیز سے کہ جو بڑی سے بڑی آزمائش آنے والی ہے آدم سے لے کے قیامت تک، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ آخری رکاوٹیں جتنی بھی ہیں، وہ یہ تاغوتی طاقتیں جتنی بھی ہیں، وہ اس کو ہٹانے کے در پہ لگی ہوئی ہیں۔ وہ میں نے ایک بات بتائی تھی کہ تھرڈ ٹیمپل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، خبریں میں آپ کو بتایا تھا گریٹر اسرائیل کا، لیکن ساتھ یہ بتایا تھا کہ وہ کر کیوں نہیں پا رہے، لاسٹ ہرڈلز ہٹانے ہیں۔ ان میں سے بڑے ہرڈلز میں سے، پولیٹیکل اسکیل کے اوپر دیکھا جائے، بڑے ہرڈلز میں سے ایک ہرڈل پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے۔ اس کا میں نے آپ کو تھرو آؤٹ قائد اعظم کے دور سے لے کے اور بین گورین کی اسٹیٹمنٹ سے لے کے آج تک کا بتایا تھا کہ کیا کیا کوششیں کی گئی انہوں نے۔ اس سے ہم اسکیپ نہیں کر سکتے، یہ تقدیر ہے، ہونے والی چیز ہے۔ تقدیر کی کلاسیفیکیشن دو طرح سے کی جاتی ہے، دو الفاظ ہیں، ایک کہا جاتا ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ اب تقدیر کے بارے میں آپ کو ایک طرف سے یہ بھی بات پتہ ہے کہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے وہ ہونا ہے، تقدیر کے بارے میں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جسے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو میں دو الفاظ بتائے ہیں، یہ اسی حدیث سے، دعا والی حدیث سے انڈرسٹینڈ کریں۔ تقدیر مبرم وہ اٹل، وہ انیویٹیبل تقدیر ہے جو ٹلی نہیں جا سکتی۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم بہت دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیں، اس چیز کو ختم کر دیں، دجال نہ آئے، وہ دعا سے نہیں قبول ہونے والی۔ دعا سے یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ قیامت مت آئے، قیامت آئے ہی نہ، قیامت نے آنا ہی آنا ہے۔ یا اللہ دعا مانگتے رہیں، اللہ ہم مجھے آپ کے سامنے حساب کتاب نہ دینا پڑے، جو جو میں گناہ کرتا آ رہا ہوں، نافرمانیاں کرتا آ رہا ہوں، یا اللہ مجھے آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ نہیں ٹالی جا سکتی چیز۔ اس طرح یہ بھی نہیں ٹالا جا سکتا کہ اللہ میں مروں نہیں، کسی طرح میرے اوپر موت کا فرشتہ مت آئے، میں بہت انجوائے کر رہا ہوں لائف کو، میں رہنا چاہتا ہوں اسی طرح ہی۔ یہ بھی دعا نہیں قبول ہو سکتی علی، یہ تقدیر مبرم ہے. تو دجال کا آنا اور یہ جو ساری کی ساری جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں یہ ہونا ہے. تقدیر معلق دوسری ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کیٹیگوریکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیٹیگوریکل بات نہیں کی، وہ عمل سے دعا سے بدلی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کا قائم رہنا یا ختم ہونا، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. اس کو ہم لوگ اپنے عمل سے اور اپنے دعا سے بچا بھی سکتے ہیں، اس کو ٹال بھی سکتے ہیں، اور اگر خود ہی ساتھ نہ دیا تو یہ چیز انیویٹیبل بھی ہو سکتی ہے. تو تقدیر کے دو اسپیکٹس ہیں. یہ جو فتنہ جس کی بات ہو رہی ہے، اس سے بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. پچھلی کلاس کے اندر میں نے ایک اور حدیث یہ بھی بتائی تھی، آل دو وہ حدیث تھی جنگوں سے ریلیٹڈ، لیکن اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ مسلمان تین گروہ کے اندر ہو جائیں گے، اور ان جنگوں، ان مصیبتوں، ان آزمائشوں، ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو دنیا کے اندر 125 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، منافق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے ذریعے چھان بین کر لینی ہے. بتایا تھا کہ ایک وہ ہوگا جو الٹے پیر واپس لوٹ جائے گا، دین کے اوپر کمپرومائز کرے گا، ایک وہ ہوگا جو مارا جائے گا اس حال میں، اور ایک وہ ہوگا جو آخری وقت تک اسلام پر قائم رہے گا، لڑتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت آ جائے گا. تو ہم لوگوں کی فکر کیا ہے؟ ہم لوگوں کی فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ان چیزوں میں، ہم نے کہاں سٹینڈ کرنا ہے. یہ چھان بین اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. ایک اور حدیث وہ بھی سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کو دوبارہ لوگ چھوڑنا شروع ہو جائیں گے، اسلام کے اوپر کمپرومائز کریں گے. ایک حدیث نہیں سنائی تھی، اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص دن کے وقت اگر ہوگا مومن، لیکن دن میں دن بھر وہ ایسے عمل کرتا رہے گا کہ شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا، سمجھتا رہے گا اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں لیکن بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہو چکا ہوگا. یا ایک شخص مومن تھا لیکن کسی غرض کی خاطر وہ رات بھر ایسے گناہ کرتا رہا کہ وہ پھر کافروں میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے چھان بین کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کام کے لیے صرف پیور لوگوں کو ہی لینا ہے. یہ جو حالات ہونے والے ہیں، جو جنگیں ہونے والی ہیں، اس کے بارے میں یہ اقبال کے دو شعروں کے اندر ہیں. اقبال کی آخری جو کتاب تھی وہ اقبال کی زندگی میں نہیں شائع ہوئی تھی، ان کے فوت ہونے کے بعد ہوئی تھی. اس کے اندر دو اشعار ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. مارکا ہے روح و بدن، یہ جو جنگ یا جو بیٹل یا کنفلکٹ ہونے والا ہے، یہ روح و بدن کا پیورٹی اور دنیا داری جو ہے اس کا آپس میں جو کلیش ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. مسلمانوں کی جو ابتدا تھی، اسلام کی ابتدا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلافت راشدہ کے دور میں، وہ تھی جنگیں یا وہ کچھ تھا وہ پیور اسلام کے لیے تھا. بعد میں جو جنگیں ہوتی رہی تھیں، وہ جب اسلام فرقے بھی ہونا شروع ہو گئے، بنو میاں کا دور، بنو باز کا دور، وہ چیزیں اب پیور اسلام نہیں رہا تھا، وہ بادشاہتیں تھیں اپنے لیے، پرسنل گینز کے لیے اسلام کی جنگیں لڑی جا رہی تھیں. لیکن پھر دوبارہ وقت آنا ہے کہ پیورٹی کے لیے، واقعی اللہ کے لیے اور واقعی اللہ تعالیٰ کے دشمن کے لیے، سیٹینک پاورز کے لیے جنگ لڑی جائے گی. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، ویسٹ کے لیے بہترین لفظ ہے یہ، سب سے زیادہ کلچرڈ ہونے کا کلیم کرتے ہیں یہ کہ ہم موسٹ ویل کلچرڈ ہیں. اور ان کا لیے یہ معاملہ ہے کہ ہم اگر باہر ان کے ملک جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ان کے اندر جتنی ایمانداری ہے اور کسی اور قوم میں نہیں ہے، جتنے ان کے اندر ڈیڈیکیشن ہے اور کسی قوم کے اندر نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے ہم سے اچھے ہیں. لیکن یہ سب کچھ وہ اچھے ہیں اپنے لیے صرف، اور دوسروں کے لیے جس قدر وہ درندے ہیں، ظلم و ستم پہ اتر آتے ہیں. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بالکل دیکھیں اس دور میں اقبال نے پرفیکٹ بات کر دی تھی. آج کل کے حساب سے دیکھیں جو ہم اتنا ڈرتے ہیں ویسٹ اور امریکہ سے، ہمارے اور ان میں سب سے بڑا جو فرق ہے جو ہم نہیں اچیو کر سکتے وہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے نا. وہ ٹیکنالوجی کا ہی ذکر اقبال نے بھی کیا ہے، ان کا جو ایج ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے. مومنوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، 125 ارب کچرے کی ضرورت نہیں ہے، مومنوں کی ضرورت ہے خالص جو اللہ تعالیٰ کے ہوں. इन फितनों के दौरान पिछली क्लासेस के अंदर मैंने बात की थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि जितना पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और जो कुछ भी सोशल सिस्टम और फिर टेक्नोलॉजी, ये फेसबुक और ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के बैकग्राउंड में ये चीज़ें बताई थी आपको मैंने। अगर हम सोचना भी चाहें इन चीज़ों के बारे में कि हम इनमें से कोई चीज़ छोड़ेंगे, तो वो क्या है, अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारने के इक्वल समझा जाता है। ये समझा जाएगा कि यार ये तो अपना करियर बर्बाद करने वाली बात है अपनी। अगर इन चीज़ों से पीछे रहे तो फिर आपको जॉब कहाँ मिलने वाली है अच्छी, आपका करियर कहाँ अच्छा होगा, आप अच्छी लिविंग कब कर सकेंगे? जब तक आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई बाहर की एक दो मोहरें नहीं लगी होंगी तो आपको तो कोई अच्छी वैल्यू नहीं मिलने वाली आपको। तो इसलिए हमें सिखाया क्या जाता है स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, या आपके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं आपको, या आप खुद ही अपने बड़ों से, अपने आपके सीनियर आपको क्या सिखाएंगे, या आप खुद ही जो अपने जहन में सोच लेके बैठे हुए हैं वो क्या चीज़ें हैं ये वाली? क्या ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो हम लोग जो लोग वेस्ट भी जा चुके हैं वो लोग इस चीज़ के ऊपर बस खुश हो जाते हैं, क्या देखो हम लोग 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गए, हम पहले नहीं पढ़ा करते थे, अब हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लेते हैं, हम रोज़े रख लेते हैं हम लोग, ठीक है ये बाकी मामला जो है, ये सूद का निज़ाम जो कुछ भी है और अल्लाह ताला के खिलाफ इसके जंग है और ये फलाना निज़ाम और ये मीडिया और ये सब कुछ जो है वो जो कुछ भी है, लेकिन मैं तो नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं एक साल के अंदर ज़कात भी कैलकुलेट करके दे देता हूँ, मैंने हज के लिए भी मैं गया था, या मैंने उम्र के लिए भी प्लानिंग की भी है, तो मैं तो इन तमाम चीज़ों के लिए हूँ। और हम लोग ठीक है हफ्ते में एक दिन हम किसी इस्लामिक सेंटर भी चले जाएंगे या हम लोग कोई ऐसा काम भी कर लेंगे तो मैं जन्नत हासिल कर सकूँगा, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर लेंगे, ये ज़िम्मेदारियाँ जो मैं पूरी कर रहा हूँ। तो मैंने उसके जवाब में 3 आयात बताई थी सूरह माईदा की, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़ाउलाइका हुमुल फ़ासिकून, जो कोई अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करता, ज़िंदगी नहीं गुजारता, सुबह शाम उसके मुताबिक नहीं करता, वो अल्लाह ताला के नज़दीक फ़ासिक है, हद से गुजरा हुआ है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़ाउलाइका हुमुल काफिरून, जो कोई अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेगा वही काफिर है। और इसी तरह 3री आयत भी, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़ाउलाइका हुमुल ज़ालिमून, जो कोई अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करता, ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं गुजारता, उसको अपना सुबह शाम का मामूल नहीं बनाता, यही ज़ालिम होगा। अल्लाह ताला ने 3 वर्डिक्स दे दिए हैं, ज़ालिम भी हैं, हद से गुजरे हुए हैं और काफिर है। तो ये समझ लेना कि बाकी हम लोग अपना नमाज और रोज़ा ठीक कर लें और वो काम चला लें, इससे नहीं काम चलने वाला, निजात यहाँ पर नहीं है। फिर निजात है क्या, कहाँ से निजात हासिल होगी, इसका जवाब अल्लाह ताला ने सूरह सफ़ में दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगों जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें बताऊँ उस तिजारत का या उस लेन देन की तरफ मैं तुम्हें गाइड करूँ जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा देगी, वो कब्र का अज़ाब, मौत की तकलीफ़, सख्ती, क़यामत की सख्तियाँ और जहन्नम का अज़ाब, इन तमाम चीज़ों से तुम्हें वो चीज़ बचा सकेगी, क्या मैं तुम्हें बताऊँ? आयत का आगाज़ मैंने किन अल्फाज से किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका क्या मतलब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मोमिनों को ही कहा जा रहा है कि ये ना समझो कि दिस इज़ इनफ, कि यू आर एक्नॉलेज एज मुस्लिम इन दिस वर्ल्ड तो दिस इज़ इनफ, ये मत समझो। एडिशनल बताया जा रहा है कि क्या तुम्हें बताऊँ वो तिजारत या वो तुम रास्ता क्या अख्तियार करो, वो लेन देन क्या करो, क्या दोगे तो तुम्हें क्या चीज़ हासिल होगी कि तुम्हें अज़ाब अलीम से छुटकारा मिल जाएगा, निजात चाहते हो कि नहीं? आयत में ये सवाल अल्लाह ताला ने पूछा है, जवाब क्या देते हैं अल्लाह ताला, तो मिनुना बिल्लाह व रसूल ही, बात कर रहे हैं अहले ईमान से, लेकिन दोबारा कह रहे हैं सच्चा ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, मान लो जो अल्लाह ने कहा है उसको मान लो, हकीकतन मान लो, विदाउट एनी रिजर्वेशंस, विदाउट एनी सेकेंड ओपिनियन, मान लो जो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको वाकई एक्सेप्ट करो। इस तरह जो सुबह शाम की दुआएं हैं उनके अंदर से एक दुआ ये भी है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम वबि इस्लामि दीनन वबि मुहम्मदिन नबिया, ए अल्लाह मैं राज़ी हो गया हूँ, मैं वाकई मुतमईन हो गया हूँ आपको अपना रब मान के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान के और इस्लाम ही को दीन मान के, मुझे और किसी रब की तलाश नहीं है, मुझे किसी और आइडियल की तलाश नहीं है और मुझे किसी और वे ऑफ लाइफ की तलाश नहीं है, मैं इस्लाम ही पर खुश हूँ, मैं अल्लाह आप ही को रब मान के खुश हूँ, जो आप मुझे देंगे अता करेंगे मैं उसी पर हैप्पी हूँ, और जिस रास्ते की तरफ रसूल सल्लम ने रहनुमाई की है और जो उनकी सुन्नत थी मैं उसी पर ही खुश हूँ। उसी चीज को अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि वाकई मान लाओ अल्लाह के ऊपर, बात मानो अल्लाह ताला की, वाकई मानो, ये नहीं कि वर्बली तो माना कहा जा रहा है, वर्बली सिर्फ कह रहे हो और आगे कुछ नहीं है अल्लाह ताला के मुताबिक। व रसूल ही, और रसूल सल्लम के ऊपर भी वाकई वाकई मान लाओ, उनके ऊपर वाकई मान लो, वाकई मान लो कि हाँ जो इन्होंने कहा था वो हक था, वो सच था, बाकी चीजें इल्यूजन है, जो उन्होंने कहा था वही रास्ता सही है। सबसे पहले तो ये अंदर कन्विक्शन आनी चाहिए, कन्विक्शन ही नहीं है तो अमल की तरफ कहाँ आएगा बंदा, और इसी चीज की कमी है। सिर्फ ये अंदर आग लग जाए तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते तुम, या तुम रोजा क्यों नहीं रखते, या तुमने फलाने काम क्यों नहीं कर रहे तुम, या तुम अपने कपड़े तो देखो किस तरह के लिबास पहन रहे हो, या इस तरह की गैदरिंग में मत जाया करो, या इस तरह की लैंग्वेज मत यूज किया करो, या इस तरह के जोक्स मत शेयर किया करो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये वो अगर अंदर ये आग लग गई तो आगे वो बंदा खुद ही उसी रास्ते पे चलेगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। मसला ही सिर्फ ये है कि वो अंदर अंदर खाली है बंदे का, अंदर कोई मोटिवेटिंग फोर्स है ही नहीं, कोई मोटिवेटिंग पावर है ही नहीं कि उसको तलब हो रही हो, अंदर प्यास हो कोई, तो पहले तो अपने अंदर ये पैदा करो। ये अगर पैदा कर पाए, ये चीज़ें हासिल अगर हो गई तुम्हें, तो फिर उसके बाद क्या करना है, फतो जाहिदूना फी सबीलिल्लाह बे अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अब तुम अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करो, जिहाद करो उसके लिए, स्ट्रगल करो, मेहनत करो उसके लिए, एफर्ट करो। जिहाद यहाँ पे हर एस्पेक्ट से मुराद है, यहाँ पे नफ्स के खिलाफ भी मुराद है, यहाँ पे सोसाइटी के गलत ख्यालात के भी मुराद है, यहाँ पर शैतान के वसवसों के खिलाफ भी मुराद है, यहाँ पर अल्लाह ताला की बात को आगे और लोगों तक फैलाना भी मुराद है, यहाँ पर एंटी इस्लाम चीज़ों का मुकाबला करना भी मुराद है, यहाँ पर यह भी मुराद है कि जो नॉन रिलीजियस लेकिन एंटी इस्लाम आइडियोलॉजी दुनिया के अंदर है वो भी मुराद है, यहाँ पर उसके बाद फिर जो निज़ाम है, जो वे ऑफ लाइफ है, उसको बाय फोर्स अल्लाह ताला के मुताबिक करना भी मुराद है, यहाँ पर यह भी मुराद है कि अगर बाय फोर्स उसको करना पड़े, कताल की नौबत आनी पड़े, वो भी मुराद है, और यहाँ पर उसको फिर बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट करना भी मुराद है। बहुत कम वर्ड्स में मैं जल्दी जल्दी से गुजार देता हूँ इसे। सबसे पहले तो इंसान अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात जो हैं उनको हलाल हराम के दायरे में कैद करें, चॉइस जो है अपनी पसंद जो है उसको कैद करें उसके अंदर। नींद, भूख, प्यास, दूसरे और किस्म के फिज़िकल डिज़ायर्स, इन तमाम चीज़ों को हलाल हराम के दायरे के अंदर कैद करें। फिर इसके ऊपर शैतान के जो वसवसे हैं उनके ऊपर फिसल ना जाए। फिर ये कि शैतान अगर आपको नहीं फिसला सका, ना आपको वसवसा दे सका, ना आपका नफ्स आपको बुराई की तरफ ला सका, फिर शैतान का अगला हमला क्या होता है, किसी और को वसवसे देगा। आपके पेरेंट्स को दे सकता है, आपके बहन भाई को दे सकता है, आपके दोस्तों को दे सकता है, आपके टीचर को दे सकता है कि भाई इसको जाके समझाओ तुम्हें हो क्या गया है, इतना रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है हम भी तो इस तरह ही है ना, हम भी तो देखो नमाज़ें पढ़ते हैं, हम करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में इतना रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझाए, या दोस्त या कोई और जो होगा उसको वसवसा देगा, इसको बुरे नामों से पुकारो, या इसका मजाक उड़ाया जाएगा, इसकी किट लगाई जाए ज़रा, ताकि डिसहार्ट हो किसी तरह से। ये हो गया पर्सनल लेवल का जिहाद, इन तमाम लेवल के ऊपर जिहाद करो अल्लाह की राह में। फिर उसके बाद अगला क्या है, जिस चीज़ को मैंने अपने लिए पसंद किया वो मेरा नेचुरल तकाजा ये है कि मैं आप लोगों को उस चीज़ की तरफ बुलाऊंगा, यही दावत तबलीग है। इसी के अंदर ये है कि एक तो दावत तबलीग हो गई आम लेवल के ऊपर, आम आदमी को बात करते हुए, जिस तरह मैं एक आम आदमी हूँ, आप लोग आम लोग हैं, एक आम लेवल के ऊपर नॉलेज के या एक इल्म के एक आम लेवल के ऊपर रहते हुए बात हो रही है। एक ये है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे टीवी के ऊपर जो आते हैं, जो ये माहिर हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने यूनिवर्सिटी के, जैसे बाहर के मुल्कों के एनालिस्ट या थिंक टैंक जितने भी होते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन के अतबार से देखा जाए बहुत थोड़े से लोग होते हैं, वो चंद हज़ार होंगे सिर्फ, अरबों की आबादी के अंदर चंद हज़ार लोग होंगे जो इंटेलेक्चुअल्स माने जाते हैं, लेकिन उनकी बातों का असर बहुत होता है। टीवी के ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही होती हैं, जो बड़े बड़े लोग, जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, वो बातें करते हैं, उनकी पॉलिसीज उनके ऊपर चल रही होती हैं। इन लोगों पे अगर इस्लाम की हुज्जत कायम करनी है तो इन लोगों जैसा बनना पड़ेगा। उन जैसा बनने के लिए, उस इल्म के उस लेवल तक जाने के लिए जो जिहाद करना पड़ेगा वो करो। پھر اینٹی اسلام جو چیزیں ہیں یا اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈاز ہیں یا جو دوسرے مذہب پھیل رہے ہیں دنیا کے اندر, ان کو فائٹ کرنے کے لیے نالج حاصل کرو, جہاد کرو, جس کی بہترین اگزامپل ڈاکٹر ذاکر نائک جو کام کر رہے ہیں. یہ تو ہو گیا ساری باتیں, دعوت تبلیغ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اب اس سے اگلا لیول یہ کہ صرف کہنے سے, سمجھانے سے, ہر لاجیکل طریقے سے, ہر منطق کے نظریے سے, ہر طریقے سے سمجھانے سے, ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھانے سے یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ بات ماننا شروع ہو جائے گا. ایک مائنورٹی ہوگی, یا ایٹ لیسٹ ایک 50% یا کچھ ایک مشکل سے 50% بھی نہیں ہوں گے, کم لوگ ہوں گے جو اس طرف آئیں گے, میجورٹی لوگ نہیں آئیں گے. ایک خاص طبقے تک, ایک خاص لیول تک دعوت تبلیغ کرنے کے بعد جب سیچوریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نیکسٹ سٹیج آتا ہے کہ اب ہم نے بائی فورس بھی کوئی کام کرنا ہے. اس کے لیے چاہے روڈ بلاک کرنے پڑ رہے ہوں, چاہے دھرنا لگانا پڑ رہا ہو, جو مرضی کرنا پڑ رہا ہو, بائی فورس بھی راستہ روکا جا سکتا ہے. جس طرح دعوت دینے والے کون تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے مسلمان جتنے بھی علماء آج تک گزرے ہیں یا جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں, جتنے بھی نبی گزرے ہیں, وہ تو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو نہیں لگتا نا کمپیریزن میں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے باوجود کتنا بڑا طبقہ تھا جو نہیں مان لا رہا تھا. پورے مکہ شہر میں کتنے لوگ ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ صرف مشکل سے 100 بندے, اور وہ بھی اتنے کم تھے کہ ان کو ہجرت کر کے جانا پڑا تھا, اتنے کم تھے وہ ریشو میں. لیکن اس کے بعد جو باقی جو اسلام ہوا ہے وہ بائی فورس اسلام آیا تھا. مکہ فتح مکہ ہوا تھا تو باقی مکہ مسلمان ہوا تھا. پھر اس کے بعد لاسٹ کیا تھا اس کا معاملہ, کہ جو دین یہاں پہ اسٹیبلش ہوا تھا اس کو ایکسپورٹ کیا گیا تھا. یہ جہاد کے وہ جو اتنی لمبی 6 لیکچرز کی بات تھی اس کو میں نے سمرائز کر کے بتا رہا ہوں, لیکن اس کو سنیں تاکہ بات کلیئر ہو. تو جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, مال بھی اپنا لگاؤ اور اپنے آپ کو بھی کھپاؤ اس کے اندر, اپنا ٹائم بھی لگاؤ. اگر تمہیں اپنے لیے کچھ سکلز حاصل کریں, آپ سوچیں میں تو کسی قابل ہوں ہی نہیں, میں کیا کام کر سکتا ہوں, پھر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کچھ کر سکیں. پہلے فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. آپ ہر بندے کے اندر اپنا ایک پوٹینشیل ہے, کوئی ایک چیز ضرور ایسی ہے جس کے اندر آپ لوگ بہت اچھے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں اپنے آپ کو کمپیئر کر کے کہوں کہ یار میں زیادہ بہتر ہوں یا ایک جو کسان کھیتوں میں کام کر رہا تھا وہ زیادہ بہتر ہے, کون بہتر ہے کرے نا یار, میری تعریف کرے میری آپ. ایگزیکٹلی یہ جواب ہے اس کا. یہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا, کیوں؟ وہ جن چیزوں کا ماہر ہے مجھے اس کے الف بے تک نہیں پتا, مجھے اس کی الف بے نہیں پتا اس کی, وہ جن چیزوں کا ماہر ہے. اور جس چیز کا مجھے پتا ہے وہ اس کے نالج کی اسکوپ میں نہیں آتی, تو یہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اس اتنا ہی ہر بندے کے اندر ایک پوٹینشیل رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اس کو پہلے تو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پوٹینشیل ہے کیا آپ کے اندر, پھر کہاں کمی ہے, اس کو فل اپ کرنے کے لیے, اس کمی کو, جو سکلز آپ کے اندر مسنگ ہیں ان کو فل اپ کرنے کے لیے اپنا ٹائم لگائیں, کھپائیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے, اپنا مال بھی لگائیں اس کے اندر. ایک مال لگانا کیا ہے, میں ابھی آپ لوگوں کی ایج کے پوائنٹ آف ویو سے ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. مال لگانا ایک تو یہ ہے نا کہ میرے پاس بڑی بینک سیونگ پڑی ہوئی ہے, میں سال کے اندر تو ایک زکوۃ دے دیتا ہوں, یا چلو اس کے علاوہ میں اپنی بڑی سی گاڑی کے اندر جا رہا ہوں اور راستے میں جاتے میں چونیاں پھینکتا جا رہا ہوں جو مجھے فقیر نظر آ رہا ہے. یہ مراد نہیں ہے اس سے, یہ مراد نہیں ہے اس سے. کہ مال اپنا باقاعدہ اگر لگانا ہے صحیح طرح سے لگایا جائے مال, یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح چونیاں ٹھنیاں نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. جو ہم مال اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ نے ریفلیکشن میں اسی قسم کی چیز ہمیں آخرت میں دینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی اس ایج کے اوپر, اگر آپ لوگ ابھی گریجویٹ ہوں گے تو کہاں بھاگیں گے ایک دم سے, جاب کے لیے بھاگیں گے ایک دم سے کہ ابھی مجھے جاب ملے گی. اور جاب کے اندر کیا ہوگا خاص طور پہ, کیونکہ ظاہر بات ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہی جائیں گے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, پیسہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کے ود ایکسپیرینس, ٹک 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 ٹائم چل رہا ہوگا. بالفرض ایک اسٹوڈنٹ کو جاب ابھی مل گئی ہے, آپ کو 2-3 مہینے بعد ملی ہے, ٹھیک ہے, اس کو 3 مہینے کیا زیادہ پیسے مل رہے ہوں گے اسے, تو کیا ہوگا جتنی جلدی مجھے جاب ملے اتنا اچھا ہے تاکہ مجھے ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹک 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 میرے بھی پیسے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. ان کے اوپر اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو یہ بھی پوٹینشیلی اپنا مال خرچ کرنا ہی ہے. جو وقت آپ پیسہ کمانے میں لگا سکتے تھے اس کو آپ نے ریڈیوس کیا, اس کو آپ نے کم کیا, اس کو آپ نے یا پینڈنگ پہ کر دیا اور آپ نے کسی اور چیز کے اوپر لگا لیا. یہ بھی دونوں قسم کا جہاد شامل ہے. اور دونوں چیزیں ہی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا تو مال دے دو یا اپنے آپ کو لگاؤ, اپنی انرجیز لگاؤ یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دونوں چیزیں کرنی ہیں, مال بھی اور اپنے آپ کو بھی لگاؤ, اپنی اسکلز اپنے آپ کو بھی اس کام میں کھپاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا اگر تم واقعی سمجھ گئے ہو بات کو. اگر سمجھے نہیں ہو تو ظاہری بات ہے بندہ کہے گا نہیں میں تو ایسی تجارت نہیں کرنا چاہتا, میں تو نہیں ہے, میں کس طرح اپنا ٹائم لگاؤں بھائی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر, میں نے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے, میں نے یہ آگے جا کے کورس کرنا ہے, یا فلانی جاب کی بڑی اچھی آفر آئی ہوئی ہے, یا میں تو یہ والا کورس نہیں کر سکتا جو دین والا کورس ہے یا عربک لینگویج والا کورس ہے, میں تو یہ نہیں کر سکتا, یا میں اتنا پیسہ تو میں نے اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا, میں نے تو موبائل لینا ہے وہ نیا ماڈل آنے والا ہے اس کا فلانے موبائل کا, میں نے اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں, یا میرا لیپ ٹاپ پرانا ہوتا جا رہا ہے سال تو گزر گیا میں نے اس کے لیے کرنا ہے, تو میں اللہ کی راہ میں چاہے میری سیلری ہو گئی 40,000 روپے میں اللہ کی راہ میں دوں گا 500 روپے بس اتنا ہی رکھا ہوا ہے میں نے. تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں بات نہیں سمجھ لگی تو پھر ظاہری بات ہے تم یہ تجارت نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا چاہیے تھا, یہ بارگین کرو میرے ساتھ, تم اپنے آپ کو اور اپنے مال کو میرے لیے ڈیڈیکیٹ کر دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ گفٹ بھی کرنا ہے آگے سیس کے اگینسٹ, تو وہ کیا ہے, یغفر لکم ذنوبکم, ان تمام چیزوں کا اس جہاد کا کفارہ بن جائے گا جو تم سے گناہ ہوئے تھے. ان کو کس طرح انڈو کر سکتے ہو, کس طرح مٹا سکتے ہو تم اس چیز کو, میں مٹا دوں گا تمہارے ان تمام گناہوں کو اگر تم میرے ساتھ یہ تجارت کرتے ہو, یہ بارگیننگ میرے ساتھ کرتے ہو. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور میں تمہیں اس جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. قرآن کے اندر یہ الفاظ رپیٹ ہی ہوتے رہتے ہیں ہر بات کے, جن کے نیچے نہریں بہتے ہیں, جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ ایک ایسی سینری ہے جس کو ہم نہیں امیجن کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی ذہن میں اس کا خیال تک آ سکتا ہے. ہم جتنے مرضی کریٹو ہو جائیں ہم اس چیز کو, ہم جنت کو دنیا کی کسی چیز کے اوپر ہی سوچتے رہیں گے. اب دنیا کے اندر نہریں تو بہہ رہی ہوں گی, اسٹریم بہہ رہی ہوتی ہیں, نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں, ہمیں تو یہ منظر نہیں ایسا کوئی ہم جانتے, ایسی کیا چیز ہوگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس نہ ختم ہونے والی جنت میں تمہیں داخل کروں گا, تمہارے اوپر بیماری کوئی نہیں آنے والی, تمہارے اوپر کوئی بڑھاپا نہیں آنے والا وہاں پہ, تمہارے چہرے پہ کوئی پمپلز نہیں پڑنے والے ادھر, اس طرح نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کوئی ایک تو بڑا ہی بدصورت ہے اور ایک خوبصورت ہے, یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. جو جتنا اعمال میں اچھا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ دیں گے, وہی چیزیں دیں گے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ, مر رہے ہوتے ہیں نا یہاں پہ لوگ کہ مر مر کے حاصل کیا کر رہے ہیں, بڑے بڑے ٹارگیٹس کے اندر کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے خواب کیا ہوتے ہیں کہ میں نے فلانی جگہ پلاٹ لے لیا, یا میری فلانی جگہ ریزیڈنس ہو گئی, سینٹورس میں اتنا مہنگا ہو 1.5-2-3 کروڑ روپے تک کے جانا وہ اپارٹمنٹس ہیں, میں کس طرح لے لوں یا کس طرح سے حاصل کر لوں. میں بیریار والوں نے کراچی کے اندر فارمز نکالے ہیں, صرف فارم 1,00,000 روپے کا مل رہا ہے اور ہزاروں لوگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسے. جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود جو تھی اس کو تانا دیتے ہوئے یہ کہا تھا شعیب علیہ السلام کے الفاظ میں کہ تم گھر اس طرح بناتے ہو جس طرح ہمیشہ تم نے رہنا ہے ان گھروں کے اندر, تم اس طرح تعمیر کر رہے ہو جس طرح تم نے ہمیشہ رہنا ہے ان گھروں کے اندر. تو یہ سارے خواب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے لیے جنت کے اندر طیب خوبصورت گھر بناؤں گا تمہارے لیے. میں جنات عدن, یہ تو ایڈن گارڈن ہے لاہور کے پاس, ایک سوسائٹی کا نام ہے ایڈن گارڈن. مطلب کیا ہوتا ہے ایڈن گارڈن یا جنات عدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائبل کے اندر جو جنات عدن ہے اس کی جگہ ایڈن گارڈن کا ورڈ یوز ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے نہ ختم ہونے والا, یہ تو ہمیں پتہ ختم ہو جائے گا, اس نے تو کہاں بسنا ہے, تو ویسے بھی پیسوں کا سکینڈل نکلا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہونے والی جنت میں میں تمہیں داخل کر دوں گا, تم لمیٹڈ پیسہ لمیٹڈ اسکلز لمیٹڈ ٹائم کے لیے مجھے دو, میں تمہیں ان لمیٹڈ نعمتیں ان لمیٹڈ ریسورسز ان لمیٹڈ زندگی ان لمیٹڈ جوانی دے دوں گا. ذالک الفوز العظیم, اور یہ دیکھ لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی تمہارے لیے. اخرا تحبونہا, اور ایک اور بھی بات تمہیں دنیا کی خوشخبری بھی میں تمہیں دوں گا جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. ظاہری بات ہے ہمارے لیے فوکس جو ہے وہ ہمیشہ دنیا کی چیز پڑی رہتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں آپ کو ککھ نہیں ملنا, سب کچھ آخرت میں ملے گا, تو موٹیویشن ہی نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ایک اور دنیا کی بھی خبر یہ, نصر من اللہ وفتح قریب, دیکھ لینا اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تمہارے لیے, اور تمہیں فتح بھی انشاءاللہ مل جائے گی تمہیں. وبشر المؤمنین, یہ خوشخبری ہے میری طرف سے جو واقعی مجھے مان لیں گے, اہل ایمان جو ہو جائیں گے یہ میری طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے. اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, دوبارہ خطاب کرتے ہوئے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا انصار اللہ, اللہ تعالیٰ کی مددگار بن جاؤ, تم والنٹیئر کرو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو والنٹیئرز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک لفظ کن ہونا ہے اور باطل ویسے ختم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کیا ابلیس کو مار نہیں سکتا یہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بساط بچھائی بھی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرد اور کال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے مددگار بن جاؤ تم لوگ. اب اتنے بڑے گلوبل فتنے کے اندر, جو آج کل کا معاملہ ہے, اتنا بڑا جو گلوبل فتنہ ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں وہ ایرریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں اور نظام جو ہے, جو سسٹم ہے وہ بہت پاورفل ہوتا جا رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض میں اگر کسی ایک چیز کا بوائیکاٹ کر لیا تو میں کہتا ہوں میں بینک میں پیسے نہیں رکھوں گا اپنے, میں فلانا اکاؤنٹ نہیں کھولوں گا, میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا, اور میں اس چیز کی طرف بلاؤں گا یہ کروں گا, ہو کیئرز کیا فرق پڑے گا انہیں اس چیز سے کہ ایک بندے نے, تین بندے نے, 30 بندوں نے, 40 لوگوں نے, 100 بندے نے یہ چیزیں چھوڑ دیں, تو اس سے ان کے نظام پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا خاص. انڈیویجولز کی حیثیت کافی کم ہو گئی ہے آج کل کی دنیا کے اندر, اور جو سسٹم ہے اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے. سسٹم کی پاور, سسٹم کے جو ریسورسز ہیں, وہ سسٹم کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بہت ہیوج ہے. وہ ایک بندے کا اس پہ فرق نہیں پڑے گا اس پہ. ہاں اگر ایک نہیں بلکہ یہ پروسیس جو ہے یہ ٹریگر ہو اور واقعی ایک بہت ہیوج کیپیسٹی کے اندر یہ چیز ہو, تب فرق پڑ سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آنکھوں دیکھا حال کیا ہے کہ جب 2003 کے اندر امریکہ نے اٹیک کیا تھا عراق کے اوپر, لوگوں نے جذبات میں آ کے, جس مرضی حال میں آ کے, جو مرضی تھا, وقتی جذبات تھا, جو بھی تھا, لوگوں نے پیپسی کا بوائیکاٹ کر لیا تھا. پیپسی کا اتنا نقصان ہونا شروع ہوا کہ پیپسی کے ٹی وی پہ ایڈز آنا بند ہو گئے تھے. پہلے تو اتنی اسکیم لگایا نکالا کرتا تھا, ایڈس پہ ایڈ, ہر وقت کرکٹ سے ریلیٹڈ ایڈ یا سنگر سے ریلیٹڈ ایڈز آ رہے ہوتے تھے, پیپسی کے ایڈز آنا بند ہو گئے. پیپسی کو مجبوراً اور برانڈز بنا کے, امرت کولا اور برانڈز بنا کے ان کو اپنا پروڈکٹ نکالنا پڑا, ورنہ تو برا حال ہو رہا تھا ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کارٹون اور جو تصویریں بنائی گئی تھیں, تو ڈینش گورنمنٹ کو اس سال, یعنی کہ اب ٹھیک ہے مسلمانوں نے صرف وقتی طور پہ, جذباتی طور پہ یہ کام کیا تھا, لیکن 2006 کے اندر ڈینش گورنمنٹ کی ڈیٹا کے مطابق جو مڈل ایسٹ اور مسلم کنٹریز کو جو ان کی ایکسپورٹ ہوتی تھیں, 52% لاس ہوا تھا انہیں. ہیوج لاس تھا یہ ان کے لیے, اکنامک بوائیکاٹ ہیوج تھا. تو انڈیویجولس ٹھیک ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, لیکن اگر یہ معاملہ پھیلے تب اس کا کوئی فرق پڑے گا, تب اس کا واقعی بڑا فرق پڑے گا. اور اگر نہیں بھی فرق پڑتا, بالفرض نہیں بھی فرق پڑتا, تو ایٹ لیسٹ وہ بندہ جا کے آپ, میں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے سکتے ہیں, اللہ میں نے اپنا رول ادا کیا تھا, میں نے اپنے اینڈ کے اوپر کام کیا تھا, دنیا جس مرضی فطرے میں مبتلا تھی, دنیا جو مرضی کر رہی تھی, میں نے اپنے آپ کو انٹیگریٹڈ رکھا تھا ود اسلام. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لوگ سب سے پہلے اپنی فکر کرو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو مومن بناؤ تم لوگ. لا یضرکم من ضل اذ ہدیتم, کسی اور کی گمراہی, دنیا چاہے جہاں مرضی جاتی رہے, کسی اور کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر تم خود ہدایت کے راستے پہ ہوگے. تمہاری جنت جو تمہارے لیے آخر میں جو چیزیں ہیں میری طرف سے جو وعدے ہیں, ان میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہونے والی اگر تم خود ہدایت پا گئے ہو, تم خود گمراہ نہیں ہو, چاہے اکیلے ہی کیوں نہیں ہو. ظاہری دنیا کی کامیابی کا رزلٹ آخر پہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت والے دن سینکڑوں نبی ایسے آئیں گے جو تنہا ہوں گے, پوری زندگی لوگوں کو پکارتے رہے, کوئی ایک بندہ نہیں ان کی بات مانی, ایک بندے نے ان کی بات نہیں مانی, لیکن وہ پھر بھی جنت حاصل کریں گے, کیونکہ قیامت کا معاملہ جو ہے وہ انڈیویجول ہوگا, آخرت کا معاملہ جو ہے وہ انڈیویجول ہے. ہماری یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے, جو آپ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے, اپنے پیرنٹس سے جا کے پوچھیں آپ کو, آل دو چھپائیں گے, کھل کے نہیں بتائیں گے, لیکن بالفرض آپ معلوم کریں, آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے ابو نے فلانی اسکیم میں بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں, कोई इंश्योरेंस स्कीम होगी उसमें भी होंगे पैसे, कहीं प्लॉट भी लिया होगा उन्होंने, फलाना बैंक भी है उनका अकाउंट, हो सकता है कहीं उन्होंने फॉरेन करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट्स किए हों, कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है उन्होंने कहीं और किए हों, कि मिसाल के तौर पे वो गाड़ियाँ जो हैं वो ओन पे अच्छी बिक जाती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट उसके अंदर भी है, कुछ इन्वेस्टमेंट इधर है, कुछ इन्वेस्टमेंट उधर है। तकरीबन हर फैमिली का एक दो फैमिली मेम्बर ज़रूर बाहर सेटल होंगे, यूरोप की किसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं सेटल होंगे, कहीं मिडिल ईस्ट में सेटल होंगे, कहीं ना कहीं सेटल होंगे वो। ये जो तमाम चीज़ें जो हम हासिल कर रहे हैं ना, खुद हासिल कर रहे हैं, लग्जरीज ऑफ लाइफ, आपके घर में, आपके कॉलोनी के अंदर अगर ये आ गया फाइबर नेटवर्क आ गया नेयाटेल का या पीटीसेल का, आपने वो केबल लगा लिया है, वो टीवी अगर आपने ले लिया प्लाज्मा टीवी एलसीडी टीवी ले लिया, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं ये अब आपकी वीकनेसेस हैं, ये आपकी कमज़ोरियाँ हैं, या आप, इन्होंने आपको हॉस्टेज बनाया हुआ है, आप इसका लॉस नहीं अफोर्ड कर सकेंगे कभी भी, इसका लॉस आप देख नहीं सकते। कि मुझे वो दिन भी देखने को मिलेगा कि जब ये चीज़ें मुझसे ज़ाया हो जाएंगी, और इन्हीं चीज़ों को हासिल करने के लिए हम लोग झूठ भी बोलते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, रिश्वत भी चलेगी, हर जायज़ नाजायज़ हराम हलाल की तमीज़ छोड़ देते हैं इन्हीं चीज़ों को हासिल करने के लिए। ये चीज़ें हमारी कमज़ोरियाँ बनी हुई हैं, ये जो हमें अमल नहीं करने देती हैं, अल्लाह की राह में नहीं चलने देंगी, पैसा खर्च नहीं करने देंगी हमें अल्लाह की राह में, इतना देंगे कि मेरे खाने पीने के ऊपर, मेरे रेस्टोरेंट्स के अंदर, मेरे होटलिंग के अंदर, मेरे घूमने फिरने पे, मेरी लग्जरी पे, मेरी परचेजेस पे, मेरी एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट हर चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, एक्सेस से भी एक्सेस में से हिस्सा मैं सिर्फ अल्लाह की राह में दूंगा। मैंने एक SMS फॉरवर्ड की थी, एक सेमिनार होना था इस संडे को, उस सेमिनार बहुत अच्छा सेमिनार था, उस सेमिनार के अंदर पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर आए हुए थे, उनका नाम था अयाज वज़ीर, ये पाकिस्तानी एम्बेसडर टू अफगानिस्तान रहे हुए हैं और तालिबान दौर में भी उधर ही थे। उन्होंने एक वाकया बताया था, उन्होंने ये कहा था कि एक दफ़ा पाकिस्तान का वफ्त आया था, तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज सिर्फ 3 कंट्रीज़ ने किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE ने, और तालिबान से जितनी भी निगोशिएशंस होती थी, बातें होती थी, वो थ्रू पाकिस्तान ही होया करती थी। तो अमेरिका वेस्ट जो है ये तालिबान के ऊपर सेंक्शंस की बात कर रहे थे कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरा है, बैड गवर्नेंस, फलाना ये वो, इस तरह बहुत इल्ज़ाम लगा लोगों के, सेंक्शंस लगानी है हमने बस इनके ऊपर, किस तरह सेंक्शंस लगे, जिस तरह ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगनी है, बस अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो चल रहा है वो उसके ऊपर सेंक्शंस लगनी है, इसका कोई ह्यूमन राइट से ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक बैड गवर्नेंस से नहीं है, एनिमल राइट से नहीं है, ये सब कुछ जो है ये ताल्लुक़ इसका अमेरिका की पर्सनल पसंद नापसंद से है। पाकिस्तान का डेलीगेशन आया, कहते हैं कि मैं तर्जुमान भी था, पाकिस्तानी डेलीगेशन ने इंग्लिश या उर्दू में बातें करनी थी तो मैंने उनको ट्रांसलेट करके तालिबान को बतानी थी। तो उन्होंने इस तरह कहा कि आप लोग ना गवर्नमेंट के अंदर अपने ये चेंजेस लाएं, आप लोग ये यूँ करें, इस तरह करें, फलाना करें, वरना अमेरिका वेस्ट और ये कंट्रीज़ जो हैं ये आपके ऊपर ये सेंक्शंस लगाएंगे, फिर आपका ये चीज़ें जो आपको इतनी फैसिलिटीज़ अभी तक मिल रही हैं वो कम हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगे हालात, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने ये ट्रांसलेट करके बात बताई, आगे से जो मुल्ला थे उन्होंने नाम नहीं लिया था, अयाज वज़ीर साहब जो थे उन्होंने नाम नहीं लिया था कि तालिबान की तरफ से था कौन, उन्होंने जवाब ये दिया जिसको मैंने फिर ट्रांसलेट करके पाकिस्तानी वफ्द को बताया कि आप ये बताएं कि अगर ये सेंक्शंस लगती हैं तो इसका पाकिस्तान को नुकसान कोई होगा कि नहीं। पाकिस्तानी डेलीगेशन ने कह दिया नहीं, जब मैंने उनको ट्रांसलेट करके बता दिया वो कह रहे हैं पाकिस्तान को नहीं फ़र्क पड़ता। उनका मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है तो हम वाकई सोचते, फिर हम उसको कंसिडर करते, क्योंकि पाकिस्तान का लॉस, पाकिस्तान का फ़ायदा हमारा लॉस होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को नहीं फ़र्क पड़ता तो आप हमारी तरफ से अमेरिका और वेस्ट उन लोगों को पैगाम दे दें, हम मिट्टी के घर में सोते हैं, मिट्टी पर बैठ के खाना खाते हैं, और मिट्टी से हमारा तीसरा ताल्लुक वो होगा कि हमारी कब्र होगी मिट्टी के अंदर। तो उन्होंने जो सेंक्शंस लगानी है वो लगाएं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपना यहाँ पे निज़ाम चलाए रखेंगे इस्लाम का। बहुत मूविंग वर्ड्स थे उनके। जिस बंदे का घर मिट्टी का हो, जिसने दुनिया की चीज़ें जमा जमा कर करके रखी नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसको वाकई क्या डर होगा मौत का या क्या लॉस का डर होगा। इधर तो हमारे जो बाय रिलेटिव्स जा चुके हैं वो हॉस्टेज बने हुए हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अमेरिका के साथ बुरे हालात हो, हम उनसे बातें किस तरह करेंगे भाई, वो आइंदा हमसे मिलने कब आएंगे, वो तोहफे कब आएंगे हमारे जो माने थे। तो मैंने बाहर जाना था, बाढ़ में गया मेरा, मेरा तो सारा प्लान ही बर्बाद हो गया बाहर जाने का। मैं तो तेरे से सेविंग कर रहा था, है अब क्या होगा मेरे साथ। ये हमारी कमजोरियां बनी हुई हैं, ये जिन कमजोरियों की वजह से हम लोग झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे और सब कुछ करेंगे। हमने अपने असल की तरफ लौटने की ज़रूरत है, जिसको इकबाल ने एक शेर में कहा था, जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से और हम में से किसी एक ने 1% भी उस पर अमल नहीं किया। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़, फिर पढ़, पढ़ा हुआ था, ये हमारा ही था, हम लोगों ने गवा दिया, छोड़ दिया इस चीज़ को। किस चीज़ का? सच्चाई का। हम नहीं सच बोलते, हम झूठ बोलते हैं, हम मेरिट लिस्टों में गड़बड़ करते हैं, हम सिफारिशें करवाते हैं, हम दूसरे को लेट डाउन करने के लिए, अपने आप को बस ऊपर करने के लिए हम हर बुराई पे उतर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। एक हदीस में 4 का भी जिक्र किया है कि जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, जब अमानत उसको दी जाती है खयानत करता है, और जब कहीं झगड़ता है आपे से बाहर हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं में आता, कोई अखलाक की कदर नहीं करेगा, गाली गलौज या वैसे बुरा भला कहना, गीबत, हर चीज़ पे उतर आएगा वो। इनमें से कौन सी चीज़ हमें नहीं है? और ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसके अंदर इनमें से कोई एक चीज़ होगी उसके अंदर मुनाफिकत का एक दर्जा ज़रूर है, और वो पक्का मुनाफिक है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, रोज़े रखता हो, लेकिन वो मुनाफिक है। तो सच्चाई की तरफ हमें वापस आना है, चाहे सच कड़वा ही लगे, और सच कड़वा ही होता है हमेशा, सच हमेशा कड़वा ही होगा, क्योंकि सच के ऊपर आपका नुकसान भी हो सकता है, और या सच की बात किसी दूसरे को बुरी भी लग सकती है, और सच्चा बंदा कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, इंसाफ करना सीखो। ये बेइंसाफियां या अपनी फैमिली वालों को तरजीह दे देना, या अपने दोस्त को तरजीह दे देना, या ये मुझे बुरा लगता है इसके साथ मैंने बुरा करना ही करना है, पर्सनल अपनी ग्रजेस, इन तमाम चीज़ों को हम अदल नहीं करते। और आखिरी चीज़ क्या है? शुजात का। डरपोक बुजदिल लोग हैं हम, डरपोक बुजदिल लोग हैं हम, सही बात कर ही नहीं सकते। ये 3 अपने अंदर क्वालिटीज दोबारा पैदा कर लो। क्यों? लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह ताला ने तुमसे कोई काम लेना है दुनिया का। वही वाली बात है कि अल्लाह ताला ने ये पुकारा है कि कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ। अगर हम नहीं आएंगे इसके लिए तो दुनिया में और भी अल्लाह ताला के बहुत सारे लोग होंगे जो हासिल कर लेंगे। दज्जाल को शिकस्त हो जाएगी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों, और जो मोमिन उनके साथ होंगे, मोमिन सादिक, वो सब, और वो जन्नत हासिल कर लेंगे। अगर हम वॉलंटियर ना किया वो हम नुकसान खा लेंगे। जिस तरह वो तकदीर मुबरम है, इस तरह इस्लाम का भी दोबारा उठना भी तकदीर मुबरम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है किताब देकर, कुरान और इस्लाम देकर, दीन हक देकर, ताकि पूरी दुनिया पर इसको फैला दें, छा जाए ये पूरी दुनिया के ऊपर। वो काम होना है, हम अगर अपने इसमें लगे रहे हम पीछे रह जाएंगे। अब अगली बात यह है कि जो बातें मैंने की थी कि उनका जो निज़ाम है, जिसके अंदर उनका इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, उनका पॉलिटिकल सिस्टम हो गया सेकुलर बेस्ड, उनका जो सोशल सिस्टम है, जो मीडिया का अटैक है हमारे ऊपर, फिर उसके अलावा जो सर्विलेंस उनकी हो रही है इतनी गहरी, उन तमाम चीज़ों का क्या जवाब हो सकता है? जितने भी सवाल मैंने उसके अंदर किए थे या जितने भी इशूज़ मैंने उठाए थे उसके अंदर, उन तमाम का एक ब्रीफ तेज़ तेज़ बस मैं जवाब देना चाहता हूँ उसका। उनमें से एक इशू मैंने उठाया था डीपॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन और डीपॉपुलेशन की बात में कह रहा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए उन्होंने कहा था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को डीपॉपुलेट करने की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन भी इसी किस्म की दी जा रही है, और बताया था कि इवन थ्रू मेडिसन वगैरह भी इस चीज़ को वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है पॉपुलेशन से रिलेटेड? अकीदा जो है वो तो हमारा यही है कि अल्लाह हर एक का राज़िक है, अल्लाह ताला हर एक को रिस्क देता है, ये हमारा अकीदा है। जो बोल फिल्म आई थी उसके अंदर इस बात की खूब किट लगाई गई थी। अकीदा हमारा यही है कि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ताला रिस्क फराहम करेगा जिसको चाहता है। साथ अल्लाह ताला ने लेकिन ये भी फरमाया हुआ है कुरान के अंदर कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसके लिए वो भाग दौड़ करेगा, कोशिश करेगा, वो इंसान वही हासिल कर सकेगा। ऑफकोर्स अपने इनके ऊपर हर किस्म की एफर्ट करनी है। अकीदा हमारा ये है कि जो मैंने कमाया था ये अल्लाह ताला ने मुझे अनायत किया था, ये सिर्फ मेरी मेहनत की रिफ्लेक्शन नहीं है, ये अल्लाह ताला का फजल है मेरे ऊपर, ये हमारा अकीदा है। आगे अब क्या फैमिली प्लानिंग, ये बातें अन इस्लामिक हैं? अगर तो हेल्थ इजाज़त देती है, अगर रिसोर्सेज इजाज़त देते हैं और अगर परवरिश बंदा अच्छी कर सकता है तो फिर अगर उसकी औलाद ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं, सेहत इजाज़त नहीं देती, या अगर रिसोर्सेज के इश्यूज़ हैं, या बंदा टाइम नहीं दे सकता, या उसको लगता है कि मैं अच्छी परवरिश नहीं कर सकता, तो फिर कम औलाद ही हो तो वो ठीक है। क्योंकि जो औलाद होती है वही इंसान के आगे रिफ्लेक्शन होगी। जब हम बूढ़े हो चुके होंगे, हमारी औलाद होगी या हमारे मरने के बाद, अब आगे हमारे अमालनामा बंद हो जाएगा, लेकिन हमारी औलाद के ज़रिए हमारा एक इनडायरेक्ट अमालनामा जारी रहेगा। उनके अच्छे अमल हमारे अच्छे अमल काउंट होंगे। उनके गुनाह, अगर उनके एंड पे ना कोई नाफरमानी है, उसका वबाल हम पर आएगा कि तुम लोगों ने क्यों नहीं तरबियत की थी उसकी। तो तरबियत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसको यूँ समझें कि एक क्लासरूम अगर बनाना होता है तो क्लासरूम के अंदर एक ही बड़ा सा बैच क्यों नहीं बना लेते हैं? 100 स्टूडेंट्स एक ही कमरे में, बड़ा और हॉल रख लेते हैं और एक हॉल के अंदर ही हम लोग सब स्टूडेंट्स को बिठा लेते हैं। तो ये बजाय कि ए बी सेक्शन और इस तरह करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? क्वालिटी और क्वांटिटी की एक रेशियो होती है, उसको मेंटेन करने के लिए। अगर बहुत ही ज़्यादा मखलूक बिठा देंगे आप लोग, तो जाहिर बात है वो क्वालिटी नहीं पढ़ाई जा सकती। आप एक एक स्टूडेंट का, आपको नाम भी नहीं याद होंगे स्टूडेंट्स के, आप किस तरह तवज्जो दे सकते हैं? इससे मैं ये सवाल पूछूं, इससे ये सवाल पूछूं, ये पीछे रह रहा है, इसको मैं बाद में पूछूं, क्या मसला है आके सवाल पूछ सकें? मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, मैनेज करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मैनेज नहीं हो सकता, इसलिए छोटा छोटी स्ट्रेंथ रखी जाए। जो अच्छे स्कूल्स होंगे वो क्या करेंगे, क्लास के अंदर स्ट्रेंथ कम रखेंगे, और जो मनी हंगरी होंगे वो कहेंगे बढ़ाते जाओ जितना मर्जी बढ़ा रहे हो, बाकी खैर है हमारे पास वसाइल नहीं है, हम क्या करें। वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये व्यू है। अगर तो अल्लाह ताला ने आपको हदायत दी है, अल्लाह ताला ने आपको रिस्क भी इतना दिया है कि आप अच्छी परवरिश कर सकते हैं, और अगर हेल्थ भी इजाज़त देती है, तो फिर औलाद ज़्यादा हो तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। और अगर इसके ऑपोजिट है, जिस तरह चाहे नाम के मुसलमान हो, लेकिन जितने भी हमारे जो करप्ट या बुरे किस्म के लोग हैं, उनके यहाँ अगर औलाद कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो जितनी औलाद होगी तो उतनी ज़्यादा अगली जनरेशन के लिए मुसीबतें होंगी, वो कम हो तो उनका अच्छा है खुदा के लिए। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हदायत है नहीं है लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियली वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो अमल कर रहे हैं, उसके ऊपर बच्चे दो ही अच्छे बस काफ़ी हो गया। और जो अच्छे बच्चे हैं भी ना, उनमें से भी एक या दो को तो बाहर ही भेजो, जो बड़े होंगे वो बाहर जाके सेटल हों, बाहर रहें। और इस पर अमल कौन नहीं कर रहा? वो ये नहीं कर रहा जो हमारा गरीब तबका है, बिल्कुल गरीब तबका, जो इशारों पर मांगने वाले होते हैं, ये उस पर अमल नहीं कर रहे। इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके नज़दीक क्या है, जितने बंदे होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतना ज़्यादा मांगने वाले होंगे हमारे पास इशारों पर, और उतना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी हमारी। उनका ये सिंपल सा रूल है। अगली चीज़ जो ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ख़तरनाक है, उसकी तरफ आते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि हमें जिस निज़ाम में फंसाया हुआ है, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है, ये पेपर करेंसी फेक करेंसी है, इसके पीछे कोई गोल्ड नहीं है, ये जाली रसीदें हैं, सिर्फ नोट छापे जा रहे हैं और हमें इसकी लालच डाली हुई है। और ये हम नहीं, अमेरिका भी इस तरह ही करता है, सिर्फ नोट छाप रहा है वो, जिसकी वैल्यू रिवैल्यू और ये तमाम चीज़ें, ये एक अजाब है। ये यानी कि जिस चीज़ के पीछे मैं मर रहा होंगे ना, जो मेरे पूरे महीने की जो मेहनत होगी ना, वो जो मुझे मिलेगा वो मुझे कागज़ होगा जिसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग हुई होगी, बस उसकी और कोई वैल्यू नहीं है, इससे बढ़ के उसकी कोई हकीकत नहीं है उसकी। फिर इसी के ऊपर बताया था कि बैंकिंग निज़ाम ये सूदी निज़ाम है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के बराबर है। ये हमने अल्लाह के साथ किस तरह जंग करनी है, क्या सवाल पैदा हो सकता है? वो तो सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है जिन्नात और इंसानों से मुखातब करते हुए कि जब तुम पर गर्म हवा और धुआं छोड़ा जाएगा तो मुकाबला कर ही नहीं सकोगे उस चीज़ का। तो क्या सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के ख़िलाफ़ हम जंग कर सकेंगे, बरकत आ सकेगी हमारे मुल्क के अंदर, करेंसी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग होगी, या ये जो यूथ के लिए लोन प्रोग्राम शुरू किए हैं गवर्नमेंट ने, इससे जो है यूथ की लाइफ अच्छी चलेगी, उस कारोबार में अल्लाह ताला की तरफ से क्या रहमत हो, क्या बरकत होनी है जो अल्लाह ताला के जंग के बराबर है? और गुनाहों में इतना संगीन गुनाह है, बड़ा गुनाह है ये, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के 40 दर्जे हैं, बड़े गुनाह भी हैं, छोटे गुनाह भी हैं। उनमें से सबसे हल्का सूद का गुनाह वो है कि कोई शख्स उसके बराबर है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ जिना करे, इसके बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। इतना गंदा गुनाह है ये, जो लोग बैंक में पैसा रख के समझते हैं कि हमें पैसा मिल रहा है, हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, वो उनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहीं से पीछे जहाँ से वो पैसे आ रहे हैं जो उसको पर मंथ मिल रहा है, वो किसी और के स्नैचिंग हो रही होगी, किसी का लोन लिया होगा, किसी का कारोबार डूब रहा होगा, किसी से घर वापस छीना जा रहा होगा, इस तरह के तमाम जुल्म चल रहे होंगे, और यहाँ पे बंदा आराम से समझ रहा है कि मेरे साथ तो बड़ा अच्छा मेरा जा रहा है, बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट मैंने की भी है। इस्लामिक बैंकिंग भी कोई सही बैंकिंग नहीं है, ये भी ड्रामा ही है। इस्लामिक बैंकिंग वाले कहते हैं हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जहाँ पे वो होता है। बंदा सवाल सीधा से ये पूछे, बुरा हाल है मुल्क का, रेलवे का बुरा हाल है, एयरलाइन का बुरा हाल है, स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है, मुल्क के अंदर क्या चीज़ सही चल रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी हाल में, आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है। वही निज़ाम है इनका, बस इस्लामिक बैंकिंग और नॉर्मल बैंकिंग में फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा कि स्टेट बैंक की चंद रेगुलेशंस फ़र्क होंगी रन करने के लिए, बाकी इन्हें कि ज़्यादा सेफ होगा, क्रैश कम करेगा, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर। अलबत्ता एक स्कॉलर थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये बात पुरानी बात है 2003 की, तो उन्होंने कहा था ये जो ट्रेंड है इस्लामिक बैंकिंग का, अगरचे हम समझते हैं कि ये सही बैंकिंग नहीं है, ये वाकई इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरी अपील आप लोगों से ये होगी कि आप लोग उससे बेहतर है कि आप लोग जो बाकी बैंकों में आपने पैसे रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में रखे हुए, उन बैंकों में रखे हुए, आप प्योर इस्लामिक बैंकों के अंदर पैसे रखें, ताकि एटलीस्ट ये जो ट्रेंड आ रहा था ना कि लोगों के अंदर एक इस्लामिक बैंकिंग का रुझान है, एटलीस्ट वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग हो, ताकि इस चीज़ को स्टेट बैंक रियलाइज़ करे कि हम पूरे मुल्क के अंदर ही इस्लामिक बैंकिंग करें। कहते वो भी साफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उससे बेहतर है, उससे बेहतर है ये, तो उसके अंदर भी सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट ही, क्योंकि ये रोज़ी जायज़ नहीं है। अब अगर मैं करंट अकाउंट भी रखता हूँ तो इसका ये मतलब है कि ठीक है, मुझे तो पर मंथ पैसे नहीं मिल रहे, जो मैंने अगर बिलफर मेरे पास 2 लाख रुपए थे तो 2 लाख ही पड़े होंगे 3 महीने बाद भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस सिस्टम का पार्ट नहीं बने, आपके पैसे से वो सूदी कारोबार तो फिर भी चल रहा होगा, आपने अपना हिस्सा नहीं लिया लेकिन आपके पैसे से उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। मजबूरी क्या है कि रखना भी ज़रूरी है, इसके बगैर काम चल भी नहीं सकता। जिस तरह यहाँ पे जो मुझे भी जो सैलरी मिलती है वो क्रॉस चेक होता है, वो कैश भी नहीं मैं करवा सकता, वो मिलेगा ही जो बैंक में ट्रांसफ़र होगा। अब मजबूरी भी है, जॉब्स के अंदर आपको सैलरी भी उसी के थ्रू मिलनी है। अब किया क्या जाएगा इसमें, ये फिर आप लोग करें कि नंबर वन करंट अकाउंट रखवाएं, और उसमें पैसा इतना ना रखें कि आप सपोर्ट कर रहे हो इन बैंक्स को, आप पैसा विड्रॉ कर लिया करें उसके अंदर, जो उसके अंदर मिनिमम होता है कि इतने पैसे कम से कम हो, वरना अदरवाइज वो डिडक्शन हो रही होती हैं या अकाउंट लॉक हो जाता है, उस मिनिमम को रखते हुए आप बाकी जो है आप निकलवा लिया करें अपने पैसे, बैंक में ना रखा करें पैसे। अब यूं के फोर्स कर रहे हैं कि बैंक में ही रखो, इसलिए आपको बताया था कैश विड्रॉल टैक्स लगाया हुआ है, टैक्स कटता है कैश विड्रॉल के ऊपर, तो ठीक आप उतना पैसा ना निकालें, आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया करें पैसे। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको जब कहीं मौका मिलेगा बाहर जाने का, वो क्या कहेंगे, आप अपने पूरे एक साल की स्टेटमेंट ला के दिखाएं, आपके बैंक स्टेटमेंट क्या है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि बैंक स्टेटमेंट में जितना पैसा होगा ना उतने चांसेस हैं आपके बाहर जाने के। जाहिर बात है उन्होंने अपना सिस्टम प्रमोट करना है, उन्होंने अपने सिस्टम को प्रमोट करना है, आपको वीज़ा दें ना दें, आप जो है ना पूरे साल के लिए पैसा हमारे बैंकों में जमा करा के रखें। तो इन इन ट्रैप्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जन्नत नहीं है कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके जो है ना सब कुछ वहाँ पे हमेशा की ज़िंदगी है, वो है आप नहीं भी जाते हैं टू हेल्प विद इट, आप नहीं भी जाते वहाँ पे आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए उस चीज़ की। इसमें मिनिमम लेवल के ऊपर रहें, सपोर्ट ना करें, क्रेडिट कार्ड मत बनवाना कभी भी। हाँ, आप एटीएम कार्ड जो दूसरा होता है, एटीएम कार्ड और जो डेबिट कार्ड होता है ये आप बना सकते हैं। वीज़ा कार्ड बनाने का डेबिट वाला ही उसका फ़ायदा एक हो सकता है कि वो बाहर के मुल्कों में भी चल सकता है एज एटीएम। नुकसान क्या उसका, उसका नुकसान ये है कि अगेन वो आपका जो ट्रैकिंग थी वो आपकी हो सकती है, उससे आराम से हो सकती है ट्रैकिंग, जो क्योंकि वीज़ा मास्टर आपको बताया था फॉलो मनी का जो प्रोजेक्ट है NSA का, उसका यही है, तमाम कंपनीज के साथ उनको रिपोर्टिंग मिलती रहती है, यानी कि जैसे ही मैंने अगर कार्ड यूज़ किया कोई वीज़ा मास्टर कार्ड का तो फ़ौरन मेरी एंट्री चली जाएगी वहाँ पे। ये फलाना बंदा जिसका कार्ड होल्डर ये था, इसके बैंक में इतना बैलेंस था, इसने इतना पैसा विड्रॉ किया है फलानी जगह के ऊपर, फलानी दुकान पे इसने इतनी चीज़ की पेमेंट की है, तो उस चीज़ को रख लें बेशक, क्योंकि वो डेबिट कार्ड है उसमें क्रेडिट का तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन उसको यूज़ मत करें। आम जो सिंपल ATM है उस हद तक आप रह सकते हैं, उस तक आप अपने आप को बस लिमिट रखें। मैंने आपको ये बताया था कि करेंसी की जब बात बताई थी कि असल करेंसी उस दौर में क्या होती थी, दिरहम दिनार की, वो गोल्ड और सिल्वर होता था और उसकी बरकत ये होती थी। वैसे और भी करेंसी यानी कि मटेरियल और भी अवेलेबल होते थे, कॉपर की भी कॉइन्स होया करते थे, लेकिन वो जो भी चीज़ होती थी एटलीस्ट उसकी अपनी एक वैल्यू होती थी। ये अभी हमें जो पता है ये 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का मटीरियल क्या है, ये मटेरियल कितने का बिकेगा, ये मटेरियल 5 रुपये का भी नहीं बिकेगा, ये 5 रुपये का कॉइन है ना, ये मटेरियल 5 रुपये का भी नहीं बिकेगा। असल बरकत जो थी वो उसके अंदर थी। फ़ायदा क्या था उसका, जिस तरह आजकल है अगर खाने पीने की या लाइफ की या गाड़ियाँ हर चीज़ महंगी हो रही है तो गोल्ड भी महंगा हो रहा है ना, सिल्वर भी महंगा हो रहा होता है। तो जब करेंसी गोल्ड और सिल्वर की थी तो इन्फ्लेशन थी ही नहीं, सिरे से इन्फ्लेशन थी ही नहीं। ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आया ही पेपर करेंसी से है। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो इस्लामिक माइंडेड लोग हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी कामयाब कोशिश जो है वो मलेशिया का एक स्टेट है जिसका नाम है केलांतान, उन्होंने कोशिश की है इस चीज़ की। पूरी करेंसी को नहीं रिप्लेस कर सकते वो, क्यों, क्योंकि जाहिर बात है वो मलेशिया के ओवरऑल स्टेट बैंक के अंदर आते हैं, करेंसी रिप्लेस नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने एडिशनल एक और सेकेंडरी करेंसी भी इंट्रोड्यूस की है। ये देखिए लिखा हुआ है केलांतान गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ये गोल्ड और सिल्वर के जिसमें कलमा वगैरह लिखा हुआ है, ये एक और है जहाँ पर ये मिलते हैं। इस तरह करके ना प्रॉपर मार्केट से ख़रीदा जा सकता है इन कॉइन्स को और बाद में ये ट्रेड के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी कि एज लीगल करेंसी ये यूज़ होती है ये वाली वहाँ पे। बातें तो अगेन सूद के ख़िलाफ़ बहुत लोग कर सकते हैं, वो तो जितना मर्जी मुझे टाइम दे मैं भी बोल सकता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो टीवी के ऊपर आते हैं औरिया मकबूल जान, उन्होंने एक सेमिनार किया था, उनका एक ट्रस्ट है जिसका नाम है इल्म ट्रस्ट, उन्होंने सेमिनार किया था पिछले साल गर्मियों में अलहमरा हॉल लाहौर के अंदर। वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि इस किस्म की एफर्ट हम लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के इस टाइप के लीगल कॉइन्स मार्केट में फ्लोट किए जाएं, जो सर्टिफाइड होंगे, यानी कि जब आप ख़रीदेंगे उन्हें तो वो इतना पैकिंग के साथ सर्टिफाइड होंगे कि ये प्योर गोल्ड प्योर सिल्वर है, लेकिन छोटे छोटे पीसेज होंगे उनके अंदर ट्रेडिंग हो। बिलफर्ज़ अगर इस तरह का कोई इकदाम होता है तो आप लोगों ने इस तरह की तमाम चीज़ों को सपोर्ट करना है, इस्लाम प्रो इस्लाम या इस्लाम की तरफ जितनी भी चीज़ें होंगी उन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करना हमारे ऊपर ज़िम्मे है। जिन टेक के CEO जो हैं और उनकी बात में कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ, उनकी बात में दोबारा कोट कर दूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे अल्फाज मुझे लगे थे उनके, पता नहीं उनके अपने अल्फाज थे या किसी और की कोटेशन थी वो, लेकिन उन्होंने ये कहा था मनी शुड बी ट्रीटेड लाइक ए टॉयलेट सीट विच एवरी वन नीड्स बट नो वन हैज़ ए डिज़ायर फॉर इट। हर शख्स को रोज़ाना वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो सिर्फ ज़रूरत की हद तक होता है, जब ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त जो उसको वॉशरूम अवेलेबल था बस वो वहाँ पर अपनी हाजत पूरी करके आ गया, वो उसके सर पे सवार नहीं होता, वो उसके कोई शेड्यूल का हिस्सा नहीं बना होता, वो उसकी कोई ऐसी कोई परवाह नहीं होती। तो मनी की हमें ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, तो जितनी ज़रूरत है हमें सिर्फ उस फोकस में रहना चाहिए। यही बातें रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस के अंदर, मा कल्ला वकफ़ा, जो थोड़ा सा हो लेकिन तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी कर दे, खैर मन कसूरा व अल्हा, ये उससे बहुत बेहतर है जो हो तो बहुत कसरत तादाद के अंदर, करोड़ों रुपए के अंदर बैलेंस शीट्स हों और कहाँ कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपका क्या जा रहा है, लेकिन वो आपको अल्लाह से दूर कर दे, भुला दे, आपको अल्लाह ही भुला दे। जो मैंने सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों को प्रेजेंटेशंस और तमाम बातों के अंदर, ये बात आपके माइंड में सेव हो जानी चाहिए कि फैशन ब्रांड्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रैप्स हैं, ये तमाम ट्रैप्स हैं, और इन्हीं को प्रमोट करने के लिए और आपके माइंड को पोल्यूट करने के लिए आपके पास मूवीज़ अवेलेबल हैं और आपके पास म्यूज़िक अवेलेबल है, मीडिया अवेलेबल है, ये इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उन्हीं सेलिब्रिटीज़ को उन्हीं ब्रांड्स के थ्रू यूज़ करेंगे, उन्हीं के थ्रू फैशन चलाएंगे वो, ताकि वो जो मैं बजट की बात कर रहा था कि 3 हिस्से होने चाहिए आपके बजट के, बजट का सत्यानाश करो भाई, आप अपने लिए खरीदें, आजकल ये फैशन में चल रहा है, आजकल ये इन है, ये ब्रांड अच्छा चल रहा है, वो ब्रांड से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भूत अपने जेनों से उतार दें, आप लोग फॉर लाइफ उतार दें। इम्प्रेस मत होना इन चीज़ों से कि अगर आप लोग कहीं और जॉब करते हैं और आपके साथ कोलीग्स के अंदर कोई लोग इसके पीछे मर रहे होते हैं और इसी की डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आप उन तमाम लोगों के दरमियान में एक बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह बैठे हों तो बैठे रहें, क्योंकि ये वो हदीस है जो आप पूरी कर रहे होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि इस्लाम दोबारा उस तरह हो जाएगा कि इस्लाम के फॉलो करने वाले अजनबी लोग होंगे, कि लोग उन वो आम लोगों में खुले मिलेंगे, ज़्यादा नहीं अजनबी रहेंगे वो। कोई अगर ब्रांड्स की बात कर रहा है, बाहर के फेरों की बात कर रहा है, महंगी महंगी चीज़ों की बात कर रहा है, आप जो है इन चीज़ों में मत फिसलना, ये सिर्फ ग्लिटरिंग अट्रैक्शन है। बस ये माइंड में रखना है, ये जो चीज़ें भी हैं ना, ये सारी के सारी आपको सिर्फ एक ज़हनी मरीज़ बनाने वाली बातें हैं। ये ब्रांड्स, कंपनीज, बड़े बड़े लेबल्स, पासपोर्ट के ऊपर आपके अच्छे अच्छे मुल्कों के वीज़ा लगे हों, फलाने बैंक के अंदर आपके अकाउंट्स हों, फलाने किस्म का कार्ड हो, गोल्ड कार्ड है, टाइटेनियम कार्ड है, ये तमाम चीज़ें आपको अट्रैक्शंस हैं फ्रेब देने के लिए। क्योंकि दज्जाल का मतलब क्या बताया था, या दज्जल का मतलब होता है फ्रेब, धोखे को कहते हैं। ये सब धोखा है, ये इस धोखे में नहीं पड़ना। माइंड में ये रख लें कि ये जो टीवी पे नज़र आ रहे होते हैं, ये हीरोज़ नहीं है, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं कि हम हीरो हैं, ये हीरोज़ नहीं है हमारे। आपके जो रोल मॉडल्स होने चाहिए वो और लोग हैं, ये आपके रोल मॉडल्स नहीं हैं। आपको इनके जैसे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, इन जैसे बाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन जैसे लाइफस्टाइल की पसंद नापसंद को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और बात है कि इन चीज़ों का जादू बहुत ज़्यादा होता है। आम हाल के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर ये समझें, आम हाल के अंदर अगर किसी लड़के से कहा जाए तुम्हें टेंड कराओ, तुम ये उम्रे पर जा रहे हो टेंड करा के आओ, तो कहेगा टेंड में दिमाग ख़राब है, मैं टेंड कराऊंगा, मैं इतना मैं अजीब सा लगूंगा। लेकिन कमाल हो गया था जब 2008 के अंदर फिल्म आई थी गजनी, लड़कों ने टेंडें करानी शुरू कर दी थी, टेंडों के साथ लड़के नज़र आ रहे हैं और लाइन भी पड़ी हुई है उनके ऊपर। इस चीज़ को बोलते हैं इस्लामिक टर्म्स के अंदर इत्तबा। उसने क्या नारा लगाया था कि अब जो मेरे फैंस हैं वो मेरे जैसे बन जाएं, उसने क्या नारा लगाया था ऐसा कोई, उसने कहीं पोस्ट किया था ऐसी बात कि जो जो मेरे फैंस हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो जिस मर्जी मुल्क के अंदर हैं, चाहे हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर क्यों नहीं है, मेरे जैसा वो रूप इख्तियार करें। उसने कैसे कहा था, उसने ऐसा कहीं नहीं कहा। इसे कहते हैं इत्तबा। इत्तबा हमें करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमने उनका इत्तबा करना है। उनकी ज़ात वाहिद ज़ात है जिनका हमने अनकंडीशनल इत्तबा करना है। बाकी उनके पास जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी हमने सिर्फ अच्छी बातें लेनी है। कायदे आज़म की अच्छी बातें लेनी है हमने, इकबाल की अच्छी बातें लेनी है। साहबा में भी अगर किसी से कोई गलती हुई या कुछ हुआ तो गलतियों उन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए उनकी अच्छी अच्छी बातें अडॉप्ट करें। गलतियों पे कमेंट करने वाले हम कोई नहीं है, हमारी अपनी औकात क्या है। ये तो उसी तरह ही है कि एक कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो फेल पे फेल हो जा रहा है, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर फेल पे फेल हो जा रहा है, नाइन्थ का पेपर तक पास नहीं हो रहा, और वो ये कह गया आइंस्टीन की थ्योरियाँ ठीक नहीं थी। सब हंसेंगे ना जैसे अभी आप लोग हंसे हैं। तो ये मामला होगा अगर हम जैसे लोग जिनका ईमान अमल का ये हाल है और हम सहाबा और बड़े बड़े स्कॉलर जो हमारे गुजरे हुए हैं हम उनकी लाइफ के बारे में कमेंट्स पास कर रहे हों, उन्होंने ये गलत किया था, उन्होंने इस तरह किया था, उन्होंने उस तरह किया था, वो इस तरह लतीफ़ा है, फरिश्ते आगे से हंसते ही होंगे हमारे ऊपर भी इस तरह ही। जो अल्लाह ने आपको अता किया ना, अल्लाह ताला ने आपको, आप उसके ऊपर प्राउड हों, खुश हों। आपको होना चाहिए अपने इस्लाम के ऊपर खुश होना चाहिए, ना कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए इस्लाम के ऊपर कि वेस्ट और ये, क्योंकि डी वैल्यू कर रहे हैं इस्लाम को। जिसकी दाढ़ी होगी उसका देखो वो तो जेनेस का मतलब है कि उसके थिंकिंग सही नहीं है उसकी, उसका तो करियर के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है उसके ऊपर। जिस लड़की ने अबाया लिया हुआ है ये तो बात नहीं चल सकती, मल्टी नेशनल कंपनियाँ तो आपको जॉब नहीं देंगी, वहाँ तो रिसेप्शन पर अच्छी लड़की चाहिए होती है भाई, प्यारी प्यारी सी, वहाँ तो इस तरह नहीं चलेगा काम। बाहर आपको वीज़ा या उन चीज़ों आपके नामों के ऊपर एतराज़ हो सकता है, जिस तरह होता है एतराज़ नाम में, अगर मोहम्मद आ रहा है तो मसला है, उसामा आ गया फिर तो मारे गए, फिर तो आप भूल ही जाएंगे आपने जाना कहीं, आपको वीज़ा भी लग सकता है कहीं। तो इस नाम के ऊपर भी, हालांकि नाम उस बच्चे का क्या रोल था, किस कदर लॉजिकल बात है कि नाम के ऊपर ब्लैक लिस्ट किया जाता है। नाम या तो उसने ना अभी रखा हो अपना तो और बात है, किस कदर लॉजिकल बात है, लेकिन जब मत मारी भी है और क्योंकि उनको कोई चैलेंज कर नहीं सकता इसलिए हम सब जो हैं वो आगे से चुप हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों में प्राउड हों जो आप कर रहे हैं। अगर मैं खड़ा होकर क्लास कोई लेक्चर दूंगा कि इस्लाम के अंदर पर्दे से रिलेटेड क्या अहकाम हैं, लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लड़के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लड़कियों के बारे में ड्रेसिंग के बारे में कुछ कहूँगा, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी भी न्यूट्रल बंदे का, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इस्लाम जो है वो वुमेन के राइट्स को सप्रेस करता है। वो अगर कोई लड़की खुद ही आउट ऑफ हर फ्री विल खुद ही अबाया ले रहे निकाब करती है, हिजाब करती है, ये है असल में शट अप कॉल वेस्ट के मुंह के ऊपर। वेस्ट ने क्या बैन लगाया हुआ है यूरोप के अंदर या बाहर, आप अगर वहाँ पर इन पब्लिक निकाब करेंगे या यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर हेड कवरिंग भी अगर होगी तो वो फिर क्राइम है, फाइन होता है उसके ऊपर, फाइन होता है उसके ऊपर। सारी बात है, जो लोग बाहर जाके सेटल हुए हुए हैं वो अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ कहीं सिखाएंगे ना, वो यही सिखाएंगे ना कि हम नमाज़ें पढ़ते रहेंगे वो, लेकिन जब तक तुम यूनिवर्सिटी में हो तुम हेड कवरिंग ना करना, तुम ये ना करना वो ना करना, कॉम्प्रोमाइज़ सिखाएंगे अगर वहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हैं वो। ऐसे अहकाम के ऊपर क्या अल्लाह ताला ने क्या कहा है, हिजरत करो तुम उस जगह जाओ जहाँ पर इस्लाम को फॉलो करना आसान है। और पाकिस्तान जो है वो इस एतबार से बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है, यहाँ पे इस्लाम के जितने बुरा हाल फ़िरका वारियत में पाकिस्तान का किया हुआ इतना बुरा हाल शायद ही कम मुल्कों का हो, लेकिन वो क्वालिटीज़ भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो और किसी मुल्क में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ना बनता जिसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं और बहुत सारे उलमा कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी यही ख्याल था, पाकिस्तान का बनाना कायदे आज़म की सबसे बड़ी गलती थी, तो अगर ना बनता और ये एक इंडिया होता तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था कि मैं एक आगाही क्लास कर सकता है यूनिवर्सिटी में बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी की इजाज़त के, कोई सवाल ही ना पैदा होता ये पॉसिबल होता। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें भी हैं जो सिर्फ यहाँ पर पॉसिबल हैं, पर के पॉसिबल नहीं है। और अरब कंट्रीज़ तो वैसे भी आपको ओन भी ऐसा नहीं करते, वो ओन सारी बात उसी को किया जाता है कि हम हमारी हैसियत क्या है, हम हर वक्त तो हमारे जो भी वज़ीर आज़म बनते पहले जाएगा उम्रे के लिए, लेकिन असल में उम्रा नहीं हो रहा होता, असल में क्या हो रहा होता है, पैसे दें जी, हमें रियाल दें आप, हमें तेल दें आप, मुफ्त तेल दें, डेफर्ड पेमेंट के ऊपर दें, तो सारी बातें जो भिखारी होता है उसकी कोई इज्जत तो नहीं होगी कोई भी। इसलिए हम में से कोई अगर वहाँ पैदा हो जाए या कुछ हो जाए, किसी की औलाद वहाँ पर हो तो वो आपको नेशनैलिटी नहीं देते, आपका दादा भी वहाँ पैदा हुआ है ना तब भी आपको नेशनैलिटी नहीं मिलनी। पाकिस्तान इस एतबार से बहुत अच्छा है, अपने प्रोडक्ट्स अपनी चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करें आप लोग, जिस चीज़ में आपको चॉइस मिलती है वहाँ पे हमेशा अपनी चीज़ ही को प्रमोट करें जो पाकिस्तानी चीज़ है। बाहर के ब्रांड्स के लिए ना तो जॉब करें, ना उनके लिए कमाएं, ना उनके लिए आप पैसा ज़ाया करें। अगेन मैं कह रहा हूँ ये हराम नहीं है ये चीज़ें, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, ये स्मार्टफोन, स्मार्ट गैजेट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक बात तो खैर ये ऑब्वियस है कि जितनी भी ये स्मार्ट चीज़ें आ रही हैं ना उतने डम हम होते जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को मैट्रिक में कैलकुलेटर की इजाज़त थी कि नहीं थी, थी? अच्छा, पर मुझे तो हमारे टाइम तक तो मैट्रिक में नहीं थी इजाज़त, एफएससी में थी। मैट्रिक तक बहुत अच्छा दिमाग चलता था, स्क्वायर रूट निकालना, ये अंडर रूट फैलाना, ये बहुत तेज़ तेज़ दिमाग चलता था, डिवाइड करना इस तरह करके। जब कैलकुलेटर की इजाज़त हो गई अब तो कुछ जमा करने का भी कह दिया जाए ना कि ये इतने हज़ार को इतने हज़ार से जमा करो, अगर फिर रुपये का भी हिसाब हो तो काफ़ी देर सोचना पड़ता है, ये ऊपर जा फिर अगला वहाँ से नीचे आया फिर ये क्या हुआ, सोचना पड़ता है इस तरह करके। लेकिन तब जो है ना ज़ुबानें भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाया करता था, तो जो फैसिलिटी मिली थी उसने असल में क्या किया, जो सलाहियत मेरे अंदर थी वो कम हो गई है। जब तक मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे तब तक कितने ज़्यादा लोगों के नंबर ज़ुबानी याद होते थे, रिश्तेदारों के हर एक के, किसी को ऑफिस का नंबर ज़ुबानी याद होता, अब किसी का भी नंबर ज़ुबानी याद नहीं होता, इवन ये भी नहीं पता होता शुरू कहाँ से हो रहा है नंबर, यू फोन का नंबर है, मोबाइल का नंबर है, किसका नंबर है, ये चीज़ें हमारे अंदर से क्या है सलाहियतें कम हो रही होती हैं। अभी वर्ड आ गया है तो अब जारी बात है कि अब आपको स्पेल चेक, वैसे तो पता नहीं क्यों आप लोगों के अभी भी स्पेल चेक ठीक नहीं होते हैं, लेकिन स्पेल चेक जो है वो खुद ही वो करता रहेगा, आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि पैशनेट के अंदर डबल एस आता है, सिंगल एस आता है, क्या लफ्ज़ है, वो खुद ही देखता रहेगा। और अगर ना समझ लगी तो हम गूगल पे सर्च मार के देख लेंगे, वो हमें बता देगा, अंकल गूगल तो हर जगह ही मौजूद है हमारे पास हेल्प करने के लिए। एक तो ये कि इसका अदर देन एनएसए और उन चीज़ों के, ये चीज़ें हमें डम बनाएंगी, जितनी ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होंगे ना उतना ज़्यादा डम है। ये तो हो गया इसका वैसे एस्पेक्ट, लेकिन एनएसए वाला जो एस्पेक्ट है वो जो मैं बात कर रहा था ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम है। पूरी दुनिया का जो डाटा उनके पास खिंच खिंच के चला आ रहा है और आप जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा डाटा उनको मिलता जा रहा है आपके लिंक्स के थ्रू। मैं नई भी कुछ चीज़ अपडेट करता आपके मोबाइल के अंदर क्या किस नाम से सेव हुआ है, मेरा नाम फलाना क्या वो सब आ रहा होगा, बल्कि अगर आपने ऐसे किसी ने मेरा कोई नाम भी रखा हुआ ना तो वो भी उनके पास जा रहा होगा कि हाँ ये नंबर जो उसने इस नाम से रखा ना इसने इस नाम से रखा, इसका मतलब है ये इसका एलियस है ये। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो ज़्यादा हंस रहे हैं ना मुझे शक हो रहा है इन पे। इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या था पहले भी एक जुमले में बताया था लेकिन ब्रीफली दोबारा बता दूँ, मकसद क्या है, पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ एक गहरी नज़र है, एक गहरी नज़र रखी हुई है पूरी दुनिया के ऊपर। मिसाल के तौर पर गलती कहाँ पर हुई थी, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جو اسلام اٹھا تھا تب کیا ہوا تھا؟ دو سپر پاورز اتنی بڑی بڑی سپر پاورز رومن امپائر پرشین امپائر کے درمیان میں عرب آتا تھا, وہ آپس میں اتنا لڑتے رہے جنگیں کرتے رہے اور عرب انہیں دونوں کے ساتھ ہی عرب ملتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں لگ سکا عرب میں کیا کیا ہو رہا تھا. پتہ کب لگا؟ جب مسلمان ان کے ساتھ جنگ میں مقابلے کے قابل ہو چکے تھے. تو اب امریکہ کیونکہ سول سپر پاور ہے اور اس کا پرپز ہے, وہ میں بتا چکا ہوں کہ جیوش نیشن, بش کی سٹیٹمنٹ جیوش نیشن کو اور اسرائیل کی پروٹیکشن اس کی ایکسپینشن ہے, تو انہوں نے صرف نظر رکھنی ہے کہ کہیں پر دنیا میں کوئی ایسی چیز ان کو نظر آ سکی نا, تو انہوں نے اپنے لیے ایک اصول بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک. 9/11 کے بعد جو بش کے ورڈز تھے پری ایمپٹیو اسٹرائک کے, پری ایمپٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے یا پہلے پری ایمپٹ کر لیں اسے. یہ ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف لیکن اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہے کرنے کا, تو اس کو پہلے ختم کر دو. صرف ایک نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہیں پر کوئی تبدیلی نظر نہ آئے, کہیں کوئی ابھرتا ہوا ستارہ نظر نہ آ جائے انہیں. ایک تو کسی کو بھی بدنام کرنا بہت آسان ہو گیا میڈیا کے ذریعے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند مہینے جو زید احمد کے ساتھ ٹی وی کے میں ہو رہا ہے کہ وہ بندہ جو بڑا لگ رہا تھا چند سال پہلے کہ یار یہ تو بڑا ہی کوئی ریولیوشنری باتیں کر رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا سے اندر سے کیا کیا کہانیاں نکال نکال کے اس کی بتائی جا رہی ہیں. بے شک بندے نے توبہ بھی کر لیا اور پھر بھی اٹھا اٹھا کے, بندے تو معاف نہیں کرتے نا, اللہ معاف کر سکتا ہے توبہ پہ, بندے تو معاف نہیں کرتے. ایک تو وہ کر رہا کام آسان ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کہیں پر کوئی چینج نظر آ سکے تو ہم ٹائملی ایکشن لے سکیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سب چیزیں ہم چھوڑ دینی چاہیے, کوئی ای میل ایڈریس یوز نہ کرے, کوئی فون یوز کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ظاہری بات ہے, یہ وقت کا تقاضا ہے, وقت کی ضرورت ہے, آلٹرنیٹس کی طرف جانے کی ضرورت ہے ہمیں, اور آلٹرنیٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کا پروجیکٹ ہے این ایس اے کا ایکس کی اسکور, وہ کیا کرتا ہے تمام لوگوں کی, چاہے یوزر اکاؤنٹ ہے نہیں ہے, براؤزنگ انفارمیشن ٹریک کر رہا ہوگا, آپ کیا کیا براؤز کہاں کہاں کر رہے ہیں, جو میں بتا چکا ہوں باتیں پریزنٹیشن میں دکھا چکا ہوں. مائیکروسافٹ کا آپ کو بتا چکا ہوں, مائیکروسافٹ کا ان کے ساتھ ہے, گوگل کا ان کے ساتھ ہے, ایپل کا ان کے ساتھ ہے, یاہو کا ایک براؤزر پلگ ان ہوتا ہے ایکسس کے نام سے, وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے پاس آلٹرنیٹس اویلیبل ہے, ہمارے پاس اوپن سورس اویلیبل ہے. آپ گوگل کروم مت یوز کریں, چاہے جتنا مرضی اچھا ہے وہ, آپ آئی مت یوز کریں, سفاری مت یوز کریں, آپ فائر فاکس یوز کر لیں, اوپرا یوز کر لیں. ویسے گوگل کا کرومیم بھی اوپن سورس ہے, آل دو وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اگر بالفرض آپ کو کروم کا, گوگل کروم کا انٹرفیس بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کرومیم یوز کر سکتے ہیں, کرومیم. لیکن آلٹرنیٹس کی طرف جائیں آپ لوگ, ان بڑی کمپنی سے بچیں جو اس کام میں لگی ہوئی ہیں. اوپن سورس تقریباً ہر پروجیکٹ کے اندر اویلیبل ہے, ہر ٹائپ کے. بات کا اثر نہیں ہوگا اور بات جھوٹی ہوگی اگر عمل خود نہ ہو. تو یہ بات اس کلاس کو کرنے سے پہلے پہلے میں نے خود جان چھڑائی ہے اپنے اسمارٹ فون اور ان چیزوں سے, پہلے میں نے خود جان چھڑائی ہے, نارمل ایک نوکیا فون کے اوپر آیا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کے آگے بات کر سکوں, تو بات کا اثر بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس میں اثر بھی ڈالیں گے بات کا, اور ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہوں. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اتنا ڈیپ یوز نہیں کرتا ہوگا اسمارٹ فون کو جتنا میں یوز کرتا ہوں. آپ لوگوں کے زیادہ تر یوز کیا ہوں گے؟ تصویروں کے اندر ہوگا, گانے ہو گئے, فلمیں ہو گئی, میجورٹی یہ چیزیں ہوں گی, یا گیمس کے حد تک ہوگا, زیادہ تر اس طرح کی چیزیں ہوں گی. میرا پڑھنے سے تعلق تھا اس کا, اس کے اندر میں اپلیکیشن وہ یوز کیا کرتا ہے, مجھے کہیں کوئی کام کی چیز نظر آئی, یار مثال کے طور پہ یہ کاغذ سے ٹکڑا نظر آیا, میں اس کا اسنیپ لے لیا کرتا تھا اور اپنا نوٹ بنا لیا کرتا تھا اس کے ساتھ کہ یہ چیز فلانی ہے, جو خبریں کہیں پڑھی ہیں, کچھ کیا ہے, میرا ان چیزوں سے تعلق تھا. پھر جو فیڈز والے پروگرام ہوتے ہیں وہ میں بہت پڑھا کرتا تھا تاکہ خبریں مجھے ملتی رہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تمام چیزوں کو بہت سوچا ہے پہلے میں نے کہ سوچ چھوڑوں نہ چھوڑوں, چھوڑوں نہ چھوڑوں, لیکن پھر میں نے طے کیا کہ چھوڑ دیا جائے اسے, تو کہ میں بات کہہ رہا ہوں پھر میں جھوٹا نکلوں گا اس بات میں, اب میں چھوڑ سکتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کے لیے بھی زیادہ بڑی بات نہیں ہے اس کو چھوڑنا. لیکن اس کا گین یہ مطلب نہیں ہے کہ اسمارٹ فون اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کبھی یوز کرنی ہی نہیں ہیں, کچھ ویٹ کریں. اوپن سورس آلٹرنیٹس اس میں بھی آ رہے ہیں, تین قسم کے آپریٹنگ سسٹم ہیں, وہ تو ان کو تو بھول جائیں, بلیک بیری ہو گیا, آئی فون ہو گیا, اینڈرائڈ ہو گیا, ونڈوز ہو گیا. یہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ڈائریکٹ انہوں نے ایکسس دیا ہوا این ایس اے کو کہ وہ ایس ایم ایس کال لسٹ ایوری تھنگ نکال سکتے ہیں, پل آؤٹ کر سکتے ہیں, آپریٹنگ سسٹم کے اندر بیک ڈورز دیے ہوئے انہوں نے. ایک آ رہا ہے فائر فاکس کا او ایس, آ چکے ہیں پاکستان میں بھی نہیں آیا. ایک ہے ٹائزن کے نام سے جو سیمسنگ لینکس فاؤنڈیشن ان کا اوپن سورس, اور ایک ہے اوبنٹو کا, یہ بھی آئیں گے اگلے سال 2014 میں آئیں گے. اگر بہت ہی کوئی مصیبت پڑ رہی ہے تو ان میں سے کسی ایک کی طرف جایا جا سکتا ہے. ان سے اپنے آپ کو بچائیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. गूगल के ऊपर सर्च करने की ज़रूरत नहीं, ऑल्टरनेट्स की तरफ चले जाएं। एक और सर्च इंजन है जो गूगल है तो पुराना, अभी NSA का जब इश्यूज आए ना तो लोगों ने जब ऑल्टरनेट्स का जिक्र किया तो उसमें एक सर्च इंजन था, नाम अजीब सा है, डक डक गो, डक जैसा डक लिखते हैं, बतख बतख गो, ठीक है, .com, अजीब सा नाम है उसका। तो पहले मैंने बहुत ज़्यादा ना उसको डिसल्यूजन होकर यूज़ किया था, लेकिन वाकई अच्छा है वो, उसमें तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। बहुत कम हुआ है कि मुझे गूगल पे कभी सर्च करने की ज़रूरत पड़ी है, बहुत कम हुआ है, पिछले मैं महीने दो की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। वो क्लेम करते हैं कि हम एनोनिमस, गूगल पे तो आपकी प्रोफाइल बनती है ना आपकी, कोई पर्सनलाइज सर्च नहीं है। ऑल्टरनेट्स की तरफ जाएं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हो, चाहे वो जिस मर्जी लेवल के ऊपर हो। एक और धोखे में कभी मत आना, एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी, जिस तरह MR वालों की आजकल एडवर्टीजमेंट लगी हुई है इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, योर हेवन ऑन अर्थ, मुसलमान की मोमिन की जन्नत दुनिया में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, इसलिए धोखों में मत पड़े चीज़ों में। योर डोर स्टेप टू पैराडाइज, ये इनकी एडवर्टीजमेंट बहरिया टाउन इन लोगों की, इन धोखों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, दैट इज़ इनफ, कोई इसके अंदर वो नहीं है, मुकाबलाबाजी नहीं है कि यहाँ पे हमारा घर होना चाहिए, इधर मैंने बनाना है, उसके लिए मैं सेविंग करूँ, इन धोखों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ वही है कि रुख अपना सीधा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक और वार्निंग भी दे दी है, सूरह माईदा की आयत 51-52 के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूदियों को और ईसाइयों को अपना दोस्त मत बनाना। अब इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्टली दुश्मन, यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त कितने होंगे, 2, 3, 5, 10, 20 इस तरह हो जाएंगे ना दोस्त, लेकिन बाकी दुश्मन तो नहीं है आपके। इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट दुश्मनी के ऊपर आ जाओ, जंग जुदाल शुरू हो जाए, दोस्त मत बनाओ, क्योंकि दोस्त वो होता है जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते हैं, उसके ऊपर आप रिलाई करते हैं, तो ना तो हमें रिलाई करने की ज़रूरत है, ना हमें उनसे कोई बातें शेयर करने की ज़रूरत है, उनको दोस्त मत बनाओ। बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, उनमें से बाज़ जो है वो एक दूसरे के दोस्त हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ हैं, तुम्हारे साथ वो नहीं होने वाले। हज़रत उमर का कॉल भी बताया था आपको मैंने, अलकुफ्र मिल्लत वाहिदा, इस्लाम के मुकाबले में कुफर जो है वो एक ही मिल्लत वाहिदा है। अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तो जो कोई तुम में से उनकी तरफ जाएगा, फिर भी जाएगा मेरी वार्निंग के बावजूद, फइन्नहु मिनहुम, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक में उन्हीं में शुमार किया जाएगा। हदीस भी है रसूल सल्लम की, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करना चाहेगा, अल्लाह ताला उसको फिर उसी में ही शामिल करेंगे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हरगिज़ ऐसे ज़ालिमों को हदायत नहीं देता, वो नहीं पे सीधे रास्ते पे आने वाले, उनके ऊपर अमल नहीं आने वाला अगर वो मेरी वार्निंग्स के बावजूद भी इस चीज़ पे अमल करते रहे। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, लेकिन इन बातों के बावजूद तुम फिर भी देखोगे कि वो लोग जिनके दिलों में मुनाफ़क़त है, जिनके दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत की बीमारी घुसी हुई है, युसारिऊना फ़ीहिम, वो इन्हीं में घुसे जाएंगे, इन तमाम बातों के बावजूद फिर भी कहेंगे कि अमेरिका ही है, वेस्ट ही है, हमने इधर ही जाना है, यही हमारा कैरियर है, हमारी लाइफ इधर है, हमारे बच्चों की अगली नस्ल यहाँ संवर सकती है, पाकिस्तान यहीं पर बच सकता है, अगर ये हमें जाना सहारा दे दें, हमारा बचाव इधर ही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिनके दिलों में निफाक होगा वो उन्हीं में घुसे जाएंगे, और उनका दावा क्या होगा जब समझाया जाएगा, तो वो क्या जवाब क्या देंगे, यकूलूना नक्शा अन तुसीबना दायरा, हमें तो ये खौफ है कि कुछ ज़माने के बुरे वक्त हम पर ना आ जाएं, तो हमने कोई तो सहारा पकड़ना है, तो इसलिए हमने इनका दामन थामा हुआ है। साफ अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया कि जो मुनाफिक होंगे वो देखना उन्हीं में फिर भी घुसे जाएंगे। और ये जब जो आयात नाजिल हुई थी, ये उस दौर में सहाबा में तो ये अमल नहीं होता था, खिलाफत रास्ता में तो ये नहीं था, इस्लाम जब तक पावर में था तब तक तो ये नहीं था, ये तो बेसिकली आयात जो है पेशन गोया टाइप हैं, जो पिछले 300 साल में और अब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती जा रही हैं बातें। सूरह कहफ की आयात जिनके बारे में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सूरह कहफ को पढ़ा करेगा हर जुम्मे और उस पर गौर फिक्र किया करेगा, वो दज्जाली फितने से महफूज रहेगा, दज्जाल के धोखे इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेगा। अब वो तो पूरी पढ़ने वाली सूरत है, लेकिन उसकी चंद आयात मैं यहाँ पे कोट करके बता रहा हूँ। आयत 7 और 8, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल्लाह,
زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے اور زمین کے اندر جو بھی ہم نے اس کے اندر خزانے چھپائے ہیں اور زمین کے سطح کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ اس کی زینت ہے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو خوبصورت جگہیں ہیں وہ بھی اور جو ہم نے بھی بنائے ہیں, کہ ہم نے اس کے اوپر بڑی بڑی کمپنیز کھڑی کر دی ہیں اور ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز کھڑے کر دی ہیں. اگر آپ سینٹورس جائیں اور گم ہو کے رہ جائیں گے, آپ بھول جائیں گے کہ میں نے شاید نماز بھی پڑھنی تھی یہاں پہ یا میرا کوئی اور بھی کام تھا. وہ ایسی ایسی جو ہے نا وہاں پہ اٹریکٹیو چیزیں آپ کو ملیں گی. اور یہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو صحیح برانڈس اور صحیح چیزیں نظر آئیں گی. تو جو کچھ بھی ہے یہ زینت ہے اس کی, یہ اس کی سجاوٹ ہے جس سے وہ خوبصورت ہو کے سامنے آ جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم جان سکیں کہ کون ہے جو پھر بھی نیک عمل کرتا رہے گا. اس فریب میں پڑے گا ہی نہیں, اس کو یہ چیزیں دلکش لگیں گی نہیں, وہ پھر بھی نیک ہی عمل کرتا رہے گا, وہ نہیں ہٹے گا راستے سے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, اور بالآخر ہم اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی تھا نا, بڑے بڑے گھر, یور ہیون آن ارتھ اور یور پیراڈائز, ڈور اسٹیپ ٹو پیراڈائز, جو کچھ بھی تھا, شاپنگ مالز بڑے بڑے, وٹ ایور بھی, بڑے بڑے جو ریزورٹس بنے ہوئے ہیں, ان تمام کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے. میدان حشر بالکل چٹیل جگہ ہو گیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخری حصے میں فرمایا ہے, آیت 103-106, کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں, حل نبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں بتاؤں آپ کو کہ سب سے زیادہ نقصان کون اٹھائے گا دنیا میں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. ایک وہ لفظ ہوتا ہے کوشش اور ایک ہوتا ہے صحیح, ایک ہی معنی میں یوز ہوتا ہے نا, صحیح کوشش کو کہتے ہیں. وہ لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے جن کی دنیا کی زندگی کی کوششوں نے انہیں گمراہ کر دیا تھا. دنیا کی بھاگ دوڑ, ڈیلی لائف کے جو ضروریات یا ان کو جو گولز بنائے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو اصل سے گمراہ کر دیا تھا, بھول گئے تھے وہ. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہ حساب کرتے جا رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میرا فلانا پیپر پبلش ہونے والا ہے, مجھے فلانی جگہ سے کال آ رہی ہے, یا مجھے اس طرح کی اچیومنٹ ہو رہی ہے, یہ وہ میرے فلانی جگہ مجھے باہر ویزا مل رہا ہے مجھے, یا یہ کہ میں نے دیکھو اتنا نیک کام کیا ہے, وہ فلانی جگہ کے اوپر ایک ہاسپٹل بن رہا تھا, میں نے اس میں اتنے پیسے دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تو فوکس اس کا دنیا کے اوپر تھا تو پھر کیا اس کا حال ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تھا, یہ کافر ہے, جنہوں نے اپنا عمل اس کے مطابق نہیں کیا, دنیا کی زندگی کی بھاگوں میں لگے رہے, یہ کافر ہیں. وَلَقَائِهِ فَحَبِقَتْ آمَالُهُمْ, تو ان کے تمام جو اعمال ہوں گے نا میں ضائع کر دوں گا, برباد کر کے رہ دوں گا ان کے تمام اعمال. فلاں نقیم و لحم یوم القیامت وزنا, اور ان کے لیے وزن برابر بھی کوئی عمل نہیں بچے گا. جن کی تمام نیکیاں, تمام کام, ایفرٹ دنیا کے لیے تھیں, جب دنیا کی تمام چیزوں کو میں چٹیل میدان بنا دوں گا تو ان کے اعمال کو بھی انہی کے ساتھ دفن کر دوں گا میں, وزن برابر بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, ان کے اس کفر کی سزا یہ ہے کہ ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آیات کو اور میرے رسول کی حدیث کو تماشا سمجھا ہوا تھا, مذاق سمجھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس نوبت تک بھی ایک مومن کو اگر جانا پڑے نا تو وہ چلا جائے ان چیزوں سے دور بھاگنے کے لیے. دنیا کیا سکھا رہی ہے ہمیں؟ ان دنیاوی چیزوں کی طرف اور زیادہ جاؤ, باہر کے بڑے بڑے شہروں میں شفٹ ہو, ٹرانسفر ہو, وہاں پہ ٹیکنالوجی ان تمام چیزوں میں ڈوبو جا کے فیسلٹیز آف لائف میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر اس نوبت پر بھی آنا پڑے کہ تمہارے پاس سوائے اپنے گھر کے ایک بکری کے اور درختوں کی جڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہونا کھانے کے لیے, تو اس پہ بھی بے شک تمہیں گزارا کرنا پڑے تو اس پہ گزارا کرنا, سسٹین ہی کرنا ہے نا, زندہ ہی رکھنا ہے اپنے آپ کو اور انرجی حاصل کرنی ہے, بس اس حد تک بھی رہنا, بس فطرے میں مبتلا نہ ہونا. آخر میں دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. ویسے ان کی جو سند ہے وہ تو بہت اتھینٹک تو نہیں ہے, کوئی صحیح نہیں ہے نہیں, لیکن الفاظ اس کے ہیں. اللہم ارن الحق حقم ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ, اے اللہ ہمیں حق کو حق بنا کر ہی دکھا اور باطل ہمیں باطل ہی نظر آئے, ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں, कि जो बातिल है हम उसको ज़िंदगी समझ के बैठे हुए हों और जो हक था हम उसको छोड़ के बैठे हों। अल्लाह जो हक है हमें हक ही बना के दिखा और जो बातिल है हमें बातिल ही बना के दिखा। और इसी तरह आप सल्लम की एक और हदीस है, अल्लाहुम्मा अरिना अशिया कमा हिया, अल्लाह हमें तमाम चीज़ों की हकीकत उसी तरह ही दिखा जिस तरह वो हैं। जिस तरह झूठ के बारे में क्या बताया था कि झूठ जो है उसकी हकीकत क्या है कि उसकी इतनी गंदी बदबू आती है कि वो फिस्ते छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये हकीकत हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो ये दुआ ये है कि अल्लाह हमें चीज़ों की अशिया की हकीकत बिल्कुल उसी तरह ही दिखा जिस तरह कि वो असल में है। रसूल सल्लम हर नमाज में भी पनाह मांगा करते थे दज्जाल के फितने से। ये तो है, बातें हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी। हल के लिए वो जहाद वाले लेक्चर्स आप लोग सुनना, उनके अंदर जो बातें हैं मोर और लेस वही बातें हैं हल से रिलेटेड भी। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।